What is up, everybody? This is Piyush Kukreja, and you're listening to The Piyush Kukreja Show. The Piyush Kukreja Show. What is up, everybody? This is Piyush Kukreja, and I'm back with another episode with my awesome guest, DP Vishwakarma. And you're listening to The Piyush Kukreja Show. और देख भी रहो YouTube पे द पीयूष कुकरेजा शो। तो गाइस, आज मेरे साथ जो मेरे गेस्ट है वो बहुत खास गेस्ट है, जिनका एपिसोड तो अब तक भी धूम मचा रहा है। हमारा अराउंड एक महीने पहले एपिसोड हुआ था डीपी वर्षकर्मा जी के साथ, जिन टॉपिक था हमारा कि बिजनेस स्क्रैच से कैसे चालू करते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट डीपी जी, ये हमारा जो एपिसोड था बहुत हिट गया। मुझे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे, स्पेशली जो बिगिनर्स है और जो छोटे टाउन्स में रहते हैं जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि बिजनेस स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आप सिटी में जाके ग्रो करोगे, तो उनको बहुत हेल्प हुई थी और उन्होंने भी, उनका एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ था। उन्होंने भी सोचा था कि हम पैसों को ऐसे रोक नहीं सकते उसको, विदाउट पैसे या कम पैसों से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते, तो जो बहुत इंस्पिरेशन मिला था लास्ट एपिसोड में। तो और आज के एपिसोड में गाइस हम बात करने वाले एसईओ के बारे में, एसईओ चेकलिस्ट। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देता हूँ डीपी विश्वकर्मा का, अगर आप ये पहली बार इनको देख रहे हो मेरे शो पे और अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है, तो मैं इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये एक डिजिटल मार्केटिंग खुद की एजेंसी चलाते हैं, इनकी एक आईटी कंपनी भी है और ये SaaS प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं। इनके बड़े बड़े SaaS प्रोडक्ट्स लॉन्च भी होने वाले, कुछ कुछ अभी तक बीटा वर्जन में भी है। और एक बहुत अच्छी ब्लॉगिंग कम्युनिटी चलाते हैं, उनका नाम है ब्लॉगर ब्लॉगर, एक बहुत अच्छी कम्युनिटी जहाँ पे ब्लॉगर्स को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो उनके कम्युनिटी में कुछ पोस्ट शेयर कर सकते हैं और वो होते हैं हाई अथॉरिटी पोस्ट। और वो क्या चीज़ें होती है ये तो डीपी जी हमको बताएंगे कि एग्जैक्टली ब्लॉगर ब्लॉगर क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो वेलकम टू द शो डीपी विश्वकर्मा, काफी अच्छा लग रहा है दूसरी बार मेरे शो पे आ रहे हो, और थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट।
थैंक्स व्यूअर्स फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। एंड हाँ, मुझे आपके फीडबैक से थोड़ा सी खुशी हुई कि हाँ, लोगों को अच्छी लगी वो सारी चीजें, क्योंकि मेरा ट्राई यही था कि मैं उनको वो चीजें प्रैक्टिकली फील करा पाऊँ कि वो कैसे वो प्रैक्टिकली स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी बिजनेस। आज की डेट में आप भी समझते हो ब्लॉगर ब्लॉगिंग मतलब बिजनेस, तो हम इस तरीके से नहीं ले सकते कि ये सिर्फ एक हॉबी है लिखना है। आप उसको एक जब बिजनेस भी लेके आ सकते हो। आपने बहुत सारे सुना भी होगा, वीडियोस देखा होगा, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं ब्लॉग से। बहुत अच्छा करियर चॉइस है।
ऑसम। सो अभी आज के जैसे कि हम एपिसोड में बात करने वाले एसईओ चेकलिस्ट के बारे में, डीपी विश्वकर्मा ने उनका करियर जो स्टार्ट किया था एज एसईओ कंसल्टेंट किया था और एसईओ में काफी अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, काफी सालों का उनका एक्सपीरियंस भी है। तो उनकी एक चेकलिस्ट है जो कि एसईओ की, वो आज वो हमसे शेयर करेंगे कि एसईओ में एग्जैक्टली प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें मायने रखती है, तो वो हम स्टार्ट करने वाले। सो डीपी जी, अगर मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कोई चीज़ मिस कर दी होगी तो आप उसको ऐड कर सकते हो।
नहीं, अभी तो साहब आपने सारी चीज़ें सही बताई है। बाकी चेकलिस्ट की बात आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें ईजिली लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है तो हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं।
और लोगों ने हमारा पहला एपिसोड सुना भी तो अब तक लोग तो आपको जान चुके होंगे और आपका फॉलोइंग भी अच्छा शुरू में जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि हम बात करने वाले एसईओ चेकलिस्ट के बारे में, तो अगर किसी को एसईओ कराना है, खुद की वेबसाइट का करना है, या वेदर उसकी खुद की वेबसाइट है, ब्लॉग है, या तो उसके क्लाइंट की वेबसाइट है, तो एक सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, लाइक प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लाइक जो चेकलिस्ट का पहला स्टेप बोल सकते हैं हम।
पीयूष, मेरे हिसाब से ना एसईओ की चेकलिस्ट सबकी अलग अलग होती है। जैसे मेरा ना खुद का बनाया हुआ चेकलिस्ट है, मैं थोड़ा सा काम करने का तरीका मेरा अलग है, वो इस वजह से क्योंकि मैं मतलब एक तारीफ करने की बात होगी पर ऑलमोस्ट मैंने 100 से ज्यादा वेबसाइट्स पे काम किया, पर्सनली मैंने काम किया हुआ है। और एनालिसिस की बात करें तो हजारों वेबसाइट्स को मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि ऑब्वियस है आप समझते हो कि एक वेबसाइट को अगर एसईओ करना है, एनालिसिस करना है, तो हमें ऑलमोस्ट उसके सारे कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं, क्या बैकलिंक बना रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सा प्रोसेस मैंने अलग सॉर्टेड किया कि काम कैसे करना है। और बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, हर तरीके के क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, 5,000 वाले भी क्लाइंट आएगा आपके पास, 50,000 वाले भी क्लाइंट आएगा आपके पास, 5,00,000 वाला भी क्लाइंट आएगा। इवन कि अगर आपको भी खुद की एफिलिएट की वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनानी है, तो आप किस तरीके से ट्रीट करते हो, ठीक है। तो चेकलिस्ट में मैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस देता हूँ वो रिसर्च के ऊपर देता हूँ। मतलब इवन कि आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले वो पहले ये डिसाइड करो कि जो भी आपका ब्लॉग है, वेबसाइट है, ई कॉम है, या कुछ भी है, कुछ किसी भी टाइप की वेबसाइट है, वीडियो वेबसाइट है या इमेज वेबसाइट है, आप एक बार थोड़ा सा टाइम लेके पहले एनालिसिस कर लो कि आपके कॉम्पिटिटर क्या काम कर रहे हैं। मतलब मैं कभी आपको, आपके ऑडियंस को शेयर करूंगा या फिर कभी दिखाऊंगा कि मेरी ना एक पीडीएफ फाइल क्रिएट होती है, और कुछ एक्सेल सीट भी हम लोग क्रिएट करते हैं, मतलब ए टू जेड हमारे पास डिटेल होती है कि कौन सा क्लाइंट मतलब कौन सा कॉम्पिटिटर जिस भी वेबसाइट के कॉम्पिटिटर पर काम कर रहे हैं, उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, उसकी सारी हिस्ट्री हम रखते हैं, सारी बैकलिंक, सारे टॉप पेजेस, क्या उसने टेक्निकल किया है, क्या नहीं किया है, सब कुछ हमारे पास होता है। इससे क्या होता है कि हम जब काम करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि काम किस डायरेक्शन में करना है। और बेसिकली एसईओ, आपको पता है कि एसईओ ऐसा कुछ रूल्स नहीं बनाए हुए हैं कि नहीं सारा कुछ वन बाय वन करते जाना है और हो जाएगा। एसईओ सारा हिट एंड ट्रायल पे होता है, आपकी अप्रोच के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट रिसर्च जो मैंने लास्ट सेशन में याद होगा आपको बोला हुआ कि एसईओ के थ्रू आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो, वो पॉइंट यहाँ भी वैलिड होता है कि जब भी आप वेबसाइट स्टार्ट करो, ब्लॉग स्टार्ट करो, कुछ भी करो, आप एक बार एनालिसिस कर लो, चाहे वो मार्केट रिसर्च के अंदर कीवर्ड रिसर्च भी आ जाता है, कॉम्पिटिटर रिसर्च भी आ जाता है, गूगल ट्रेंड भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो वो सारी चीजें बनाओ, एक डिटेल शीट बनाओ, उसको रखो, उसको देख के समझो पहले सारी चीजें, इवन की कॉम्पिटिटर के टॉप पेजेस हैं या फिर सबसे जो पेजेस सोशल मीडिया पे शेयर भी हुए हैं। आप कुछ ऐसे टूल्स हैं, आपको भी पता होगा शायद बज सुमो करके है, एक दो और टूल्स है जिससे आप वो टॉप सारे आर्टिकल्स निकाल सकते हो जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा शेयर किए गए होंगे। तो इस टूल से आप पहले एक बार डेटा निकाल के रख लो कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट तो यही है, मार्केट रिसर्च, डिटेल में रिसर्च करो।
ओके, डिटेल
उसके अंदर कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटर रिसर्च, गूगल ट्रेंड्स वाली रिसर्च, या फिर जो भी चीजें जितनी भी रिसर्च की पार्ट आती है वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है।
ओके, ऑसम। तो पहला स्टेप आपने बताया कि पहले मार्केट रिसर्च करें, हम उसका पूरा देखें कि कीवर्ड रिसर्च करें, कंप्यूटर रिसर्च करें, कंप्यूटर करके आ रहा है। तो इसमें और एक क्वेश्चन ये भी आता है जिसको स्टार्ट करने की, दो क्वेश्चन होंगे ये कि अगर कंप्यूटर रिसर्च करना है एनालिसिस, तो उसमें एग्जैक्टली किस चीज़ों को एनालिसिस करना है और कैसे करना है, अगर आप उसको कुछ विस्तार में बता सको तो।
हाँ, ऑब्वियस है, मैं बताता हूँ। फर्स्ट तो ये है ना कि जब भी आप कंप्यूटर रिसर्च करो, तो मेरा जो फेवरेट टूल है ना, फेवरेट है और फर्स्ट एंड लास्ट टूल है, वो है एचआरएफ टूल।
अच्छा,
उसके अलावा मुझे कोई टूल पसंद ही नहीं आता। मैं खुद सेस, जैसे आपने बताया मैं सेस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं लोगों को बता सकता हूँ कि हाँ हम लोग कुछ सेस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च बैकलिंक के टूल्स वगैरह, बट अब वो इनकम्प्लीट है टोटली। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी वो बनता है नहीं बनता है, कितना पावरफुल होता है नहीं होता है, वो बात की बात है। पर पर्सनली मुझे सिर्फ से अच्छा कोई टूल ही नहीं मिला आज तक जो इतना डिटेल में आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानने का मौका देता है, बहुत डेटा है उसमें। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहले मैं वेबसाइट डालता हूँ और सबसे पहले उसके टॉप पेजेस देखता हूँ। टॉप पेजेस में जाने के बाद आपको, अगर कभी आपने यूज किया होगा, तो वहाँ एक कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आप किस कंट्री में हो, किस जोन में देखना चाहते हो। मैं ऑल कंट्री करता हूँ, ऑल कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, वो सारे पेजेस सारे कंट्री के हिसाब से आ जाती है, उसके कौन से कीवर्ड पे क्या पोजीशन है, उसकी कीवर्ड की क्या वॉल्यूम है, कौन सा यूआरएल पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, सब कुछ पता होता है। उसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करके पहले डिटेल में वो शीट को सिस्टमैटिक तरीके से बताता हूँ कि कौन से जोन में कितना ट्रैफिक जनरेट कर रहा है ये वेबसाइट। तो मान लो कि मैं अगर कॉमन वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरा कोई जोन नहीं है कि मुझे इंडिया में करना है, दिल्ली में करना है, यूएसए करना है, मुझे बस ट्रैफिक से मतलब है। अगर ब्लॉग वेबसाइट है तो ट्रैफिक से मतलब है। तो उस केस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप ये समझ पाओगे कि ये वाला पर्टिकुलर वेब पेज इसका इतना ट्रैफिक यहाँ से जनरेट कर रहा है, तो मे बी अगर इस डायरेक्शन में काम किया जाए तो ये इतना ट्रैफिक हम भी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा मैं देखता हूँ उसके बैकलिंक्स, बैकलिंक्स में भी मैं सारी बैकलिंक्स नहीं देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसके रेफरिंग डोमेन वाली बैकलिंक्स देखता हूँ। तो रेफरिंग डोमेन भी मैं DR और UR जो होते हैं वहाँ पर, डोमेन रेटिंग और URL रेटिंग, इन दोनों के हिसाब से मैं शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ और सारी बैकलिंक एक तरफ रख लेता हूँ। उसके बाद फिर उसको एक्सेल सीट में डाउनलोड करने के बाद उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करता हूँ कि कौन से एंकर बेस्ड बैकलिंक है, कौन से डायरेक्ट बैकलिंक, उसको न्यूड बैकलिंक भी बोलते हैं हम लोग, मतलब डायरेक्ट पेस्ट कर दिया वैसे URL को, कौन सी इमेजेस बैकलिंक है, कौन से कंटेंट बेस है, फिर डू फॉलो बैकलिंक, कौन सी नो फॉलो। देखो आप सोचो कि इतनी सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, अगर सोचो आपके पास भी सारा डेटा हो सब कुछ कस्टमाइज में, तो आपका डायरेक्शन कितना सॉर्टेड हो गया।
एग्जैक्टली,
ठीक है कि आपको सारी चीजें पता है कि यार ये वेबसाइट इस तरीके की वेबसाइट बिल्ड करनी है, तो इतना काम तो करना पड़ेगा एटलीस्ट। साथ में ये भी दिख जाता है कि कितने टाइम से वेबसाइट एसईओ पे वर्क कर रही है, एचआरएफ में सब दिख जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस के जो बहुत हेल्प करते हैं मुझे।
ओके, काफी सही बोला आपने, एचआरएफ जो आपने टूल का नाम बोला, ये जहाँ से हम पूरी कंप्यूटर रिसर्च कर सकते हैं, पता चलेगा हमको कि एग्जैक्टली वो बैकलिंक्स कहाँ से दे रहे हैं, उनके कौन से टॉप रैंकिंग पेजेस से टॉप आर्टिकल्स कौन से उनके रैंक हो रहे हैं, कौन सी कंट्री में क्या रैंकिंग हो रही है, कौन से कीवर्ड्स में रैंक हो रहा है, पूरा डिटेल में ये दिखेगा। तो ये पेड टूल है राइट, या इसका फ्री वर्जन भी कुछ अवेलेबल है?
इसका ट्रायल तो है, लेकिन आज की डेट में अगर इंडिया में आप हो तो इंडिया के अंदर ग्रुप बाय चलता है, क्लिक ओवर, कुछ ऐसी कंपनीज हैं छोटी छोटी जो ग्रुप बाय के ऊपर है, जैसे आपको लिमिटेड एक्सेस चाहिए, सपोज कि आप सिंगल ब्लॉगर हो, आपके पास जैसे हम लोग तो है कि एजेंसी रन करना है तो हमारे पास वेबसाइट बहुत सारी होती है, तो वहाँ पर लिमिटेड एक्सेस होता है, तो हम काम नहीं कर सकते लिमिटेड एक्सेस के साथ, तो हमें तो लेना पड़ता है पेड टूर। बट अगर कोई बंदा है जिसके पास 2 या 3 ब्लॉग है या 1 ब्लॉग है, वो क्लिक ओवर से बाय कर सकता है, वहां पे इतना एक्सेस होता है कि वो ढंग से रिसर्च कर सकता है अपने ब्लॉग के लिए, वहां पे हार्डली उसको 600-700 रुपए में उसको पूरा टूल का एक्सेस मिल जाता है महीने के लिए।
ओके, मतलब एक बिगिनर के लिए वो काफी हो जाएगा लाइक।
हाँ, वो काफी हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल, मतलब इंडियन के लिए तो बहुत हेल्पफुल है।
हाँ, मतलब अगर आगे जाके स्केल करना है तो इन्वेस्ट कर सकता है, पर स्टार्टिंग के लिए
डिपेंड करता है। अब सपोज कि हमारे, वही बोला मैंने कि हमारे पास नंबर ऑफ वेबसाइट ज्यादा है, तो हमें हमारे पास लिमिटेड एक्सेस से काम नहीं हो पाएगा।
एग्जैक्टली, जी जी, समझ। तो क्लिक ओवर नाम बताया आपने, राइट? क्लिक ओवर।
हाँ, क्लिक ओवर।
ऑसम। सो आपने एसईओ चेकलिस्ट में जैसे कंप्लीट रिसर्च बताया आपने, और एक चीज बताई जो कि है कीवर्ड रिसर्च। तो कौन से टाइप के कीवर्ड्स, लाइक हमको कैसे कैसे टाइप के कीवर्ड्स रिसर्च करने चाहिए, और कितने डेंसिटी होनी चाहिए, और कौन से कुछ टूल्स वगैरह है, जैसे आपने एचरेफ बताया, वैसे कीवर्ड्स के लिए कोई टूल?
कीवर्ड्स के लिए एचरेफ तो है ही, मतलब वो भी मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मतलब प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो एचरेफ को रखता हूँ। फिर एक keywordstool.io करके टूल है, जो बेसिकली वो बनाया गया था ऑटो कम्प्लीट बेस, उसने गूगल ऑटो कम्प्लीट के बिहाफ पे, मतलब एक फंडा लेके बनाया था उसने, और लॉन्ग टेल के लिए वो बनाया गया था कीवर्ड, कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पता चल जाएंगे और बहुत इजीली तरीके से पता चल जाएंगे। ये दोनों टूल मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपने किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए, चाहे अपने ब्लॉग के लिए, चाहे अपने कीवर्ड के लिए। उससे मुझे एटलीस्ट इतना एक्यूरेट डेटा, तो ये तो नहीं बोलूंगा कि सारे एक्यूरेट डेटा देते हैं, बट हाँ, अगर आप दोनों टूल को कंपेयर करो तो मेजोरिटी ऑफ जो डेटा आता है ना, दोनों का लगभग सिमिलर रहता है, क्योंकि उसमें ये भी तो देखना होता है ना कि कितनी मीडिया, कितनी कॉम्पिटिशन है, लो है, मीडियम है, हाई है, ठीक है। प्लस साथ में ये भी देखना होता है कि दोनों कंपेयर करने में कितना डिफरेंस आ रहा है। मान लो एचआर 1000 दिखा रहा है वॉल्यूम, और आईओ टूल दिखा रहा है 2000, तो डिफरेंस 1000 का आ गया, तो वो फिर मुझे फिर थर्ड टूल्स यूज करना पड़ता है कोई, ताकि मैं डिफरेंस देख सकूँ, चाहे उसके लिए मुझे SEMrush यूज करना पड़े, या फिर मे बी नेल पटेल का तो मैं कुछ खास यूज नहीं करता, बट क्विकली देखने के लिए, जैसे किसी का वेबसाइट आया कि मुझे इस कीवर्ड पे काम करना है, तो मैं क्विकली देखने के लिए नेल पटेल का तुरंत यूज कर लेता हूँ, क्योंकि वो ओपन टू यूज है, बिना लॉग इन किए फटाक से आपको दिख जाता है,
ऊपर से
उस तरीके से देखता हूँ। उसमें जो आपने बोला ना कि क्या देखना चाहिए, देखो कॉम्पिटिटर रिसर्च अगर देखा जाए तो मेन कॉम्पिटिटर रिसर्च से ही चीजें स्टार्ट होती है एसईओ में, उसके बिना तो क्या ही बोलूं मैं कि कुछ करना भी बेकार है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी मेरे हिसाब से बहुत तरीके के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वेबसाइट का टाइप क्या है। जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ, आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी चलाते हो, या फिर आप एजेंसी चलाते हो, या फिर एक फ्रीलांसर हो, और आप इंटरप्राइज में आते हो, मतलब आप एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट चलाते हो, तो ऑब्वियस है आपका, आप वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विस देते हो पुणे के अंदर, और उसके पास ऊपर कितना भी कंपटीशन हो, आपको एसईओ करना है, तो ऑब्वियस वो कीवर्ड तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। आप उसको छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है ना, बिजनेस ओरिएंटेड कीवर्ड है, तो उसको कैसे छोड़ सकते हो। तो फाइट आपको करते रहना है। अब कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है कि कितना एफर्ट आप लगाते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए कि जो न्यूज की वेबसाइट्स होती हैं, तो ज्यादातर न्यूज की वेबसाइट कीवर्ड रिसर्च पे काम नहीं करती हैं, वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करती हैं, तो वो गूगल ट्रेंड यूज करती हैं कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा बात हो रही है, कौन से ऐसा टॉपिक जो ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, कौन से के सर्चेज एकदम से बढ़ रहे हैं, तो वो टॉपिक वो उठाते हैं और उनपे उनके ऊपर कंटेंट बनाते हैं, या फिर जो न्यूज से रिलेटेड वेबसाइट होती है, कॉन्टेंट बेस्ड वेबसाइट होती है, वो भी वही चीज यूज करती है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग का, अब जो नॉर्मल आपको ब्लॉग से ब्लॉग जैसी वेबसाइट बनानी है, वैसे जैसे सपोज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हो गया, या फिर किसी पर्टिकुलर नीश के ऊपर आपने बनाया, उस केस में आता है डिटेल कीवर्ड रिसर्च। उसके ऊपर आपको देखना होता है कि कंपटीशन थोड़ा कम हो, वॉल्यूम ठीक ठाक हो, ठीक है, और सीपीसी ठीक ठाक मिले, ताकि मतलब कि हम डील करने में हमें आसानी हो, मतलब आप रिलेट कर सकते हो इस चीज को।
ओके, मतलब पूरा डिटेल हम
जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है, कि जैसे आप डॉग के ऊपर स्टार्ट कर रहे हो ब्लॉग सपोज, तो पेट के ऊपर स्टार्ट कर रहे हो, तो ज्यादातर उसमें जो कीवर्ड्स होंगे वो हाउ टू से होंगे, व्हाट इज से होंगे। अगर आप एकदम एग्जैक्ट कीवर्ड लेके चलते हो तो डिफिकल्टी आपकी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस एफर्ट भी बढ़ेगा। लेकिन आप हाउ टू वाले कीवर्ड उठा के लॉन्ग टेल वाले आप स्टार्ट करो, तो जल्दी और फटाफट रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की वेबसाइट है आपकी, क्या जोन है, कितना कॉम्पिटिशन है। जैसे बोला कि सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो फिर ऑब्वियस आपको लेना ही पड़ेगा। अब मैं बोलूँ कि मुझे एसईओ एजेंसी इन दिल्ली में रैंक कराना है और मैं वो कीवर्ड लूंगा ही नहीं, तो वो तो बेवकूफी हो गई ना।
मतलब जैसे हमको रैंक कराना है उसके ऊपर से हम कीवर्ड ले जो टाइप के कीवर्ड और हम
जैसे वो समझना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने बोला मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कीवर्ड रिसर्च, सब कुछ डिटेल में आप एडवांस में करते हो ना तो आपको एफर्ट, टाइम फ्रेम, बजट डिसाइड करने में आसानी हो जाती है।
राइट, तो हम पहले देखें कि मार्केट में लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं, किस टॉपिक्स को ज्यादा सर्चेस आ रहे हैं, किस कीवर्ड्स को सर्चेस आ रहे हैं, वो कीवर्ड्स ले और देखें हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, उनके किस टाइप के ब्लॉग्स रैंक हो रहे हैं, किस टाइप के कीवर्ड्स पर रैंकिंग हो रही है। तो इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, रिसर्च से शुरुआत होती है। तो रिसर्च के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लाइक क्या होना चाहिए?
रिसर्च आपने कर लिया, आपने फाइनलाइज कर लिया कि किस पे काम करना है। सपोज कि आपने आपको एक एजेंसी वेबसाइट बनानी है, आपने रिसर्च करके जो भी डेटा निकाला, आपको पता चल गया कि इसमें कंपटीशन तो है, मतलब इतना कंपटीशन है कि मुझे टाइम लगेगा, तो उसके बाद आप कंटेंट प्लानिंग करो। कंटेंट प्लानिंग के लिए सबसे आसान तरीका मैंने वही बताया, टॉप पेजेस लो, आप एक कीवर्ड के ऊपर आप 10 कॉम्पिटिटर निकाल लो, उन 10 कॉम्पिटिटर के देखो कि कौन से कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, उसकी सारी चीजें आपके पास पता होंगी तो आसानी से आप एक 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 फ्रेम सेट कर सकते हो कि हाँ इतना कंटेंट मुझे बिल्ड करना है। तो कंटेंट स्ट्रक्चर बनाओ आप पहले कि हाँ, जैसे सपोज कि मैंने आपको बताया नीस वेबसाइट की अभी एग्जांपल लिया, अगर पेट के ऊपर आपको लिखना है तो पेट में भी अगर आप डॉगी के ऊपर वेबसाइट बनाते हो तो डॉग के ऊपर बहुत आसान हो गया, आपके पास लिमिटेड टॉपिक हो गया। तो लिमिटेड टॉपिक हो गया तो कंटेंट जितने भी बनने होंगे वो जितनी पॉसिबिलिटी हो गया फटाफट बना लोगे। लेकिन आप सिर्फ उसे पेट के ऊपर बनाते हो तो आप कैट भी ले सकते हो, डॉग भी ले सकते हो, बहुत सारी चीजें ले सकते हो। तो कंटेंट सोचो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, जितने ज्यादा टर्म्स आप वेबसाइट के अंदर रख रहे हो उतना ज्यादा वो कंटेंट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो उतना ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो रिसर्च के बाद कंटेंट प्लानिंग, क्योंकि रिसर्च के साथ ही कंटेंट प्लानिंग आसानी से की जा सकती है।
रिसर्च का हम करें कंटेंट प्लानिंग, तो कंटेंट में जब हम लिखते हैं तो उसमें हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है?
देखो कंटेंट प्लानिंग के टाइम पे हमें देखो कंटेंट ना दो तीन तरीके के होते हैं जो मैं पर्सनली मैं समझता हूँ। फर्स्ट ये कि एवरग्रीन कंटेंट होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिस पे भर भर के ट्रैफिक आता है और उस ट्रैफिक से अगर उन टॉपिक को, उन कीवर्ड्स को आप लेके चलते हो और आपकी इंडस्ट्री रिलेट करती है तो आपकी वेबसाइट को एक फर्स्ट पुश मिलता है। क्या होता है ना कि अगर आप एक कोई ऐसा कीवर्ड ले लिया, ब्लॉग बना दिया, वो ब्लॉग रैंक ही नहीं हो रहा तो फिर क्या ऐसे ब्लॉग बनाने का मतलब ही क्या हुआ। तो एवरग्रीन कंटेंट का यही फंडा आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरी हम लोग की इंडस्ट्री में कि बहुत सारे लोग एसईओ की वेबसाइट ढूंढते हैं कि कौन कौन सी टाइप की वेबसाइट है, कौन कौन सी वेबसाइट पे लिंक बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ये एवरग्रीन टॉपिक हो गया। ये आज भी पढ़ा जा रहा है, पिछले पहले भी पढ़ा जाता था, ढूंढा जाता था और आगे भी ढूंढा जाएगा क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें नई नई वेबसाइट चाहिए उनको, तो कहने के लिए एवरग्रीन कंटेंट हो गया। अगर थोड़ा सा और टॉपिक हटके बात करूं, एंटरटेनमेंट ले लो आप, एंटरटेनमेंट में अगर आप मूवीज के ऊपर ब्लॉग लिखते हो तो सोचो आपके हिसाब से सबसे सटीक क्या ब्लॉग होना चाहिए मूवीज से,
मूवीज से मतलब कैरेक्टर्स के नाम
जो एवरग्रीन में आता है, एवरग्रीन में आता है जो हमेशा सर्च किया जाता होगा,
कैरेक्टर्स के नाम मतलब जो एक्टर्स उसमें प्ले कर रहे हैं या उसी रिगार्डिंग स्टोरीज,
स्टोरीज क्रिएट हो सकती है, उनकी बायोग्राफी हो सकती है, वो हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे फ्यूचर भी पढ़ेगा, हमने भी पढ़ा या फिर हमारे पास भी पढ़े होंगे लोग कि शाहरुख खान, सपोज कि शाहरुख खान है तो शाहरुख खान कौन है, उसकी पूरी बायोग्राफी हमारी जनरेशन भी पढ़ रही है और आगे वाली भी पढ़ेगी, तो वो एवरग्रीन कंटेंट हो गया। साथ साथ एवरग्रीन ये भी हो गया कि जैसे कि लोग सर्च करते हैं कि 2020 में कौन सी टॉप मूवीज थी, हॉरर मूवीज थी, 2016 में कौन सी थी, 17 में कौन सी थी। अब जब हमारा टाइम था, जैसे हमारा टाइम अभी मूवीज देखने देगा तो हम तो खूब ढूंढ ढूंढ के देख रहे हैं, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो हम खोज खोज के देख रहे हैं, तो हमारे देखने का तरीका भी तो एक यार देखते 2017 में कौन कौन सी अच्छी मूवी आई थी, हमने ये सर्च कर लिया। अब सोचो कि 2-3 साल बाद जो हमारी बाद वाली जनरेशन है वो भी तो ये सर्च करेगी ना कभी, 2017 में 2020 में कौन कौन सी मूवीज थी। तो एवरग्रीन का कॉन्सेप्ट यही है कि आप ऐसे कॉन्टेंट पे काम करो जो आपको हमेशा ट्रैफिक देगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंटेंट में कि जो जैसे सर्विस वाली बात करी कि सर्विस बेस्ड कंपनी है तो आपको वो फिर कंटेंट बिल्ड करना ही करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कि आप सर्विस में क्या प्रोवाइड करते हो, स्टेप्स क्या हैं, प्राइस क्या, सब कुछ आप डिटेल में समझाते हो तो वो तो आपको रखना ही रखना है। और ब्लॉग के लिए फिर आपको जैसे ब्लॉग होते हैं तो जो डिमांड के ऊपर होते हैं, जो नए नए ट्रेंड आते हैं, तो उसके लिए तो फिर यही है कि आप बाकी लोगों का देखो कि वो कितना डिटेल में रिसर्च करके कंटेंट बना रहे हैं, तो आप भी डिटेल में रिसर्च करके आप बनाते हो तो नए ट्रेंड के साथ आप फ्लो में आ जाओगे।
Alright, समझ गया। तो मतलब एक होगा कि एवरग्रीन टाइप के कंटेंट जो आगे जिसके सर्चेस हमेशा होते रहेंगे एटलीस्ट आने वाले 5-10 साल तक, कि जैसे कि हाउ टू कुक बिरयानी, ये ऐसे
हाँ
तो ऐसा
ऑब्वियसली
कोई ईयर नहीं, कोई कभी भी सर्च, जैसे कि आपने मूवीज का एग्जांपल लिया या ऐसे टाइप की एवरग्रीन टॉपिक, जैसे कि एक कोई डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड भी हम ले सकते हैं, या तो हम दूसरा आपने बोला
हाँ
एक
ये भी ले
ट्रेंडिंग
सकते
टॉपिक, जैसे कि अभी कोविड 19 चल रहा है तो उस रिलेटेड ट्रेंडिंग हो गया, या लॉकडाउन चल रहा है तो हाउ टू डू बिजनेस इन लॉकडाउन, काइंड ऑफ डिपेंड ऑन द निश, उसके ऊपर इस टाइप के हम कॉन्टेंट लेके। ऑसम, तो फिर ये कॉन्टेंट का आपने जो चेकलिस्ट बताया, फिर इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
देखो अभी तो हमने जैसे रिसर्च की बात कर ली, रिसर्च करना है, फिर कंटेंट बिल्ड करना है, उसके बाद आता है कि जब दो चीजें आप कर ली, आपको लगता है कि हाँ अब हमें करना चाहिए स्टार्ट, मतलब कि ये अभी हमने कंटेंट की रिसर्च मतलब प्लानिंग करी, बनाया नहीं हमने, ठीक है, ये हमने रिसर्च किया, प्लानिंग करी है, अभी क्या करना है हमें कि वेबसाइट बिल्ड करनी है, तो सबसे पहले वही ऑप्शन है कि हमें किस प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बिल्ड करना है, मतलब कोड प्योर कोडिंग करके हमें वेबसाइट बनानी है, वर्डप्रेस यूज करना है, फिर कोई और थर्ड पार्टी यूज करना है, तो यहाँ पे आपका ये होता है सिलेक्शन करना है कि कौन सा आपको टेक्निकली बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है आपको एसईओ में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ब्लॉगिंग कम्युनिटी की बात करी, ब्लॉगर ब्लॉगर, अब सोचो कि हमने प्योर कोड करके बनवाया बनाया हुआ है उसको, अब उसमें इतनी टेक्निकल इश्यू आते हैं कि हमें एक एक चीज को सॉर्ट करने में महीनों लग जाते हैं और फिर भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। मे बी हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है कि हम लैग कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस ना हो, ये भी हो सकता है कि हमने ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर ली जिस वो शायद अडोप्ट ना कर पा रही हो। तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पिक करो जिससे आपको इजी हो काम करने में, वो भी डिपेंड करता है, ऑब्वियस है, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की, आप इमेज की वेबसाइट बना रहे हो तो वर्डप्रेस पे तो नहीं बना सकते ना आप इमेज की, उसके लिए आपको प्योर वैसे ही वेबसाइट बनानी पड़ेगी। आप वीडियोस की वेबसाइट बना रहे हो जिसपे आप खुद सेल्फ होस्टेड वीडियो, जैसे कि एमएक्स प्लेयर है, इस तरीके की वेबसाइट्स हैं, इवन नेटफ्लिक्स है या प्राइम है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, तो अगर ये वेबसाइट है तो वर्डप्रेस पे तो रन होंगी नहीं, तो हर हर तरीके की वेबसाइट के लिए, मतलब जो भी आप रिसर्च कर रहे हो कॉम्पिटिटर मार्केट फिर कंटेंट, इसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि बेस्ट कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसपे आप अपनी वेबसाइट रन कर सकते हो। अगर नॉर्मली ब्लॉग रन करना है तो ऑब्वियस है, सबको पता है वर्डप्रेस से अच्छा कुछ नहीं है,
तो ये प्लेटफॉर्म
तो
डिसाइड हो गया, तो इसके बाद
ठीक है।
हाँ ओके सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे?
नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा, वही बता रहा था
जी, तो आपने बोला
प्लेटफॉर्म।
कंटेंट प्लानिंग, फिर हमको प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है, तो हमने वर्डप्रेस डिसाइड कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारा पहले से ही वेबसाइट बना हुआ है, या क्लाइंट का हमारा पहले से वेबसाइट बना हुआ है, 1-2 साल से, 4-5 साल से चला रहा है, वो एसईओ का डिसीजन उसने अभी लिया, अभी एसईओ में आ रहा है, तो प्लेटफॉर्म हमको लाइक चेंज करना चाहिए, उसी प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू करना चाहिए।
वही ना, डिपेंड करता है, आप उसकी एनालिसिस करो, अगर मान लो कि वेबसाइट वर्डप्रेस में मिलती है तब तो कोई कोई बात ही नहीं है, अगर कोई पीएचपी पे या किसी और टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है या फिर वो प्योर कोडेड है, आप अपने टेक्निकल टीम से वो चीज़ डिस्कस करो, अगर उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, हम हैंडल कर सकते हैं, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, चेंज करने से ज़्यादा फिक्स करने में ज़्यादा आसानी होगी, आप फिक्स करके चीज़ें जल्दी से इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि नई वेबसाइट बनाने में टाइम भी जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी जाएगा, तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और क्लाइंट के ऊपर भी, ऑब्वियस है, सामने वाला कितना खर्च करना चाहता है, आप सजेशन दे दो 50, वो करना चाहे 5 भी नहीं।
वो भी है, समझिए। ओके, तो उसके बाद लेट्स सपोज हमारा आपने बोला कि वर्डप्रेस टू लॉग इन, फिर कंटेंट प्लानिंग हो गया, फिर हम इसको लिखना भी शुरू कर रहे हैं, फिर हमारा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा?
नेक्स्ट स्टेप होगा कि टेक्निकल एसईओ करो आप, क्योंकि टेक्निकल एसईओ में बहुत सारी चीजें आती हैं कि मतलब कि फर्स्ट की आपका जैसे सर्च कंसोल सेटअप कर लो आप, अगर पहले से है तो ठीक है, उसको देख लो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे क्या क्राउलर एरर्स हैं या फिर कौन से पेज इंडेक्स नहीं हुए हैं, कौन सी में क्या प्रॉब्लम्स है, सब कुछ आप उसको फिक्स करो, सारा कुछ पहले एसईओ करने से पहले उसको फिक्स करो सारी चीजें। उसके बाद गूगल एनालिटिक फिक्स करो, फिर बिंग बिंग भी एक उसका क्या बोलते हैं बिंग कंसोल पे जाके उसको वहां पे आप सबमिट करो, फिर आपके पास साइट मैप बनाओ, फीड यूआरएल बनाओ, आरएसएस फीड, ये सब चीजें जो टेक्निकल है ना, जो आप कहीं भी आप गूगल करोगे ना तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी टेक्निकल एसईओ होता क्या क्या। बेसिकली यूआरएल्स अगर अच्छे बने नहीं हुए हैं तो सारे यूआरएल्स फिक्स करो आप, जिस जो कीवर्ड ओरिएंटेड हो या फिर एसईओ ओरिएंटेड हो, सारे यूआरएल्स फिक्स करो, इमेजेस फिक्स करो, जाके वहां पे मीडिया चेक करो कि मीडिया में कौन कौन सी फाइल पड़ी है, इसकी लेंथ क्या है, उसका साइज क्या है, डायमेंशन जो बोलते हैं हम लोग, स्केल करो उसको, ये सारी चीजें पहले फिक्स कर लो आप स्टार्ट करने से पहले, इससे क्या होगा आपका वेबसाइट का स्कोर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी अच्छी वेबसाइट होगी, जितनी फास्ट वेबसाइट होगी, उतना अच्छा आपका एसईओ में हेल्पफुल होगा। एक पॉइंट और हो सकता है इसमें, जैसे कि आप सर्वर अच्छा हमेशा यूज करो, पर्सनली मैं डिजिटल ओशन यूज करता हूँ क्योंकि उसका सर्वर मुझे बहुत पसंद है, मतलब वेबसाइट एकदम घटिया घटिया वेबसाइट होती है ना, उस पर आप होस्ट कर दो, उसका स्कोर हमेशा अच्छा रहता है, कितने भी बेकार इंटरनेट पे आप उसको रन कर सकते हो, वो ओपन हो जाती है,
डिजिटल ओशन।
हाँ डिजिटल ओशन में पर्सनली फील करता हूँ कि अच्छा है और मुझे रिस्पांस भी अच्छा रहा, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इतने चार्जेस नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉर्मली अफोर्डेबल है।
ओके तो जैसे आपने बोला कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि टेक्निकल एसईओ, हम टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करें हमारे वेबसाइट का, हमारे ब्लॉग का, कि कुछ टेक्निकल इश्यूज तो नहीं आ रहे कोड में, फिर हम उनको सर्च कंसोल पे सबमिट करें, उसके बाद हम चेक करें कि हमारी होस्टिंग कौन सी है, कितना फास्ट पेज पेज कितना फास्ट लोड हो रहा है, वो सब टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करें। ओके ऑसम, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लाइक इसके बाद हमारा कॉन्टेंट भी हमने लिख लिया, फिर एक चीज आती है ऑन पेज की बात हो गई, इट्स ऑफ पेज लाइक जस्ट सपोज बैकलिंक्स।
नहीं अभी ऑन पेज की बात नहीं हुई, अभी सिर्फ उसी हमारा टेक्निकल बात हुआ। ऑन पेज में जब हम आएंगे ना, तो ऑन पेज में आता है आपको वही कंटेंट राइटिंग आ जाता है कि आप कंटेंट कैसे बिल्ड करते हो, क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीजें रखनी है, वो सारा कुछ ऑन पेज में ही आता है। थोड़ी बहुत चीजें मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस हम वीडियो शेयरिंग पे बात कर, स्क्रीन शेयरिंग पे नहीं बात कर रहे, तो मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता हूँ, बट हाँ फिर भी मैं ट्राई करता हूँ बताने की। फर्स्ट ये कि फर्स्ट मैंने टेक्निकल इसमें एक चीज मिस हो गई, वो है आपका डुप्लीकेट कंटेंट प्लस आउटडेटेड कंटेंट। जो भी आपको लगता है ना कि जो भी ब्लॉग है या पेज है वो आउटडेटेड है या फिर वो बेकार है, डिमांड के ऊपर नहीं है, या फिर डुप्लीकेट कंटेंट है, या फिर वो मतलब एम ही डाल दिया गया, सब कुछ डिलीट कर दो आप, उसका कोई मतलब नहीं वेबसाइट पर रखने का, क्योंकि ना वो आपको ट्रैफिक देगी और ना ही कोई बेनिफिट देगी, सिर्फ और सिर्फ आपके वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ाएगा और आपकी वेबसाइट का साइज बढ़ाएगा। उससे अच्छा है कि आप फालतू की चीजें डिलीट कर दो, उतनी ही चीजें रखो जितना आप आपकी वेबसाइट में मतलब एसईओ करने में आपको हेल्प मिले। उसके बाद वही है, आते हैं ऑन पेज में। देखो ऑन पेज में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं कुछ लिमिटेड टॉपिक के बारे में बात करता हूँ जो कभी भी उसका ट्रेंड खत्म नहीं होगा। फर्स्ट ये है कि कॉन्टेंट का जो स्ट्रक्चर आप तैयार करो वो बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज हो। पर्सनलाइज का मतलब कि जब आप पढ़े ना कोई तो लगे कि यार ये जो चीजें मैं ढूंढ रहा था ना मुझे वही चाहिए, ये मेरे लिए ही बनाई गई है। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। इंप्रूव का मतलब आपका सीटीआर भी इंप्रूव होगा, आपका बाउंस रेट इंप्रूव होगा, मतलब कि क्वालिटी इंप्रूव होगी, लीड्स इंप्रूव होगी, अगर लीड बेस का आपकी वेबसाइट है तो लीड्स आएंगी आपको, अगर ट्रैफिक बेस है तो ट्रैफिक और एंगेजिंग होगा, वो सोचेगा कि आप दो चार और ब्लॉग पढ़ के देखें। ठीक है, तो कंटेंट इस तरीके से पर्सनलाइज होना चाहिए काफी। उसके दो फायदे हैं, फर्स्ट कि जब आप यूजर को पर्सपेक्टिव से देख के चीजें बनाते हो तो गूगल को भी बहुत फायदा मिलता है वैसे चीज समझने में, कि यार ये बंदे ने ये क्लिक किया होगा, उस पर इतना टाइम स्पेंड किया, बैक किया, लेकिन उसने बैक करके ब्राउजर बंद कर दिया, उसके बाद इसने किसी और वेबसाइट को विजिट नहीं करा, इसका मतलब ये कि वो कंटेंट इसी ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्च कर रहा था उसको यही वाला कंटेंट चाहिए। ठीक है, मैं टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज कर रहा हूँ, मे बी बहुत सारे लोग होते हैं ना टेक्निकल टर्म को पता नहीं होती, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं उसको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। तो इससे बहुत इंप्रूवमेंट होती है, मतलब वेबसाइट बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है एसईओ में, उसको लगता है कि हाँ जो बंदा जो चाहिए उसको मिल रहा है, इसलिए वो ब्राउजर बंद कर रहा है।
ओके,
प्लस स्ट्रक्चर मतलब आपकी पूरी पहले से आपको प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरह, जैसे मैंने बोला पेट वाला एग्जांपल दिया, अगर डॉग के ऊपर आप लिख रहे हो कि डॉग को केयर कैसे करनी है, तो आप सारी चीजें इन्वॉल्व करोगे ना, कि डॉग को नहलाना कैसे, उसको शैम्पू कौन सी यूज करनी है, टॉवल कैसे यूज करना है, ठीक है, उसके नाखून साफ करने हैं, मतलब जो भी चीजें, मतलब इतना मुझे पता नहीं है, बट इस तरीके से आप बताओगे सारी चीजें, तभी तो एक सामने वाला बंदा आएगा ब्लॉग ढूंढ रहा है कि डॉग को कैसे केयर करते हैं, तो उसको सारी चीजें पता चल जाएंगी, तो वो खुश हो जाएगा और बंद कर देगा वेबसाइट, और फिर उसके बाद अपना यूज करेगा, किसी और वेबसाइट को विजिट नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन पेज के लिए, इस तरीके से ही समझ के आपको कंटेंट बिल्ड करना है। जब कंटेंट बिल्ड कर रहे हो तो कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप जो भी कीवर्ड्स यूज करते हो तो ट्राई ये करो कि कीवर्ड की सिनोनिम्स यूज करो आप, मतलब आप हमारे ट्विन्स कीवर्ड बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, ट्विन्स कीवर्ड्स यूज करो। ज्यादातर ऐसा नहीं कि आपने जैसे वो ऑन पेज एसईओ के बारे में आपने लिखा तो कम से कम हजारों बार आपने ऑन पेज लिख दिया, वो बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है वो। आप उसको उसके सिनोनिम्स यूज करो, आप उसके LSI कीवर्ड यूज, सॉरी ट्विन्स कीवर्ड यूज कर सकते हो, जिससे कि क्वालिटी स्कोर बढ़ता है आपके कंटेंट का, रीडेबिलिटी बढ़ती है। प्लस साथ में होता है कि जब वो कंटेंट आप बिल्ड कर रहे हो तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट पैराग्राफ में वो कीवर्ड रखो ताकि गूगल जल्दी से, मतलब ऐसा कुछ बोला जाता है हिट एंड ट्रायल पे ही है, ऐसा कुछ लिख के तो दिया नहीं गूगल ने, बट ये बोला जाता है कि हाँ आप फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड रखते हो तो ईजी होता है वो रैंक करने के लिए। फिर उसके बाद आप H1 टैग में रखो, H1 टैग मतलब वही हेडिंग 1 में रखो, हेडिंग 2 में रखो, हेडिंग 3 में रखो, URLs में यूज करो, टाइटल में यूज करो, आप कंक्लूजन लिखो तो उसमें भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करो, बुलेट पॉइंट्स रखो, इटैलिक रखो, बोल्ड यूज करो, ताकि वो पूरा एक लगे कि हाँ रिसर्च करके एडिटोरियल एक एडिटर ने बनाया है पूरा आर्टिकल, मतलब एज अ ह्यूमन को भी लगे, एज अ गूगल को भी लगे कि हाँ यार काफी रिसर्च करके बहुत क्वालिटी कंटेंट बनाएगा। और उसमें स्टफिंग करनी है आपको कीवर्ड की, बहुत ही खूबसूरती से करना है कि पढ़ने में समझ में भी ना आए, और जो जिस तरीके से वो हमने मैंने बताया ना कि सारी चीजों कहाँ का पुट करना, वो भी पुट हो जाए।
ऑसम, समझ गया। लाइक पढ़ने का मजा आना चाहिए और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए, और हम जो यूजर को चाहिए वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि बेचने वाला बेच के भी चला जाता है लेकिन पता नहीं लगता वो बेच के गया, वो चूना लगा के गया, तो वही वाली चीज है। कंटेंट में भी कीवर्ड को इस तरीके से ही रखना है आपको कि पढ़ने वाले को फील ना हो और आप काम भी निकाल लो उससे।
अच्छा, समझ गया। ऐसा लगना चाहिए कि कीवर्ड अननेसेसरी यूज हुआ है, कि रीडेबल होना चाहिए वो कीवर्ड पर्टिकुलर,
रीडेबल होना चाहिए।
ओके, ऑसम। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लाइक ये कंटेंट की चीज होगी, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप?
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि फिर इसमें इसके बाद तो और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे मैं पर्सनली क्लस्टर क्लस्टर टर्म होता है जिसमें क्लस्टर बोल सकते हो, और भी एक और टर्म सिलोइंग बोलते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है ना कि हम एक कंटेंट को रैंक कराने के लिए उसके सपोर्टिंग कंटेंट बनाते हैं। जैसे अगर व्हाट इज एसईओ आप लिख रहे हो तो ऑन पेज एसईओ के बारे में अलग से लिखो, ऑफ पेज एसईओ के बारे में अलग से लिखो, और जैसे टेक्निकल एसईओ के बारे में अलग से लिखो। सारा कंटेंट एक जगह भी लिखो प्लस साथ में अलग अलग भी लिखो, मतलब समझाने के लिए सिर्फ उसे बता रहा हूँ। इसके क्या होगा कि उस कंटेंट को सपोर्टेबल कंटेंट मिल जाएगा कि पैरेलली बहुत सारे सपोर्ट कर रहे कंटेंट उसको। और दूसरी चीज मैं जो समझता हूँ वो होता है ना कि गूगल एक कीवर्ड क्लाउडिंग का टर्म है, आपको पढ़ने में कहीं नहीं मिलेगा मे बी, लेकिन वो मैंने खुद से बनाया कि जब एक वेबसाइट आप स्टार्ट करते हो ना, आप पर्टिकुलर एक ही इंडस्ट्री को टारगेट करते हो तो क्लाउडिंग तैयार हो जाती है आपके वेब पेज पे, मतलब आप जो पूरा वेबसाइट है ना उसके ऊपर क्लाउडिंग हो जाता है, वो पर्टिकुलर उसी टॉपिक के बारे में सारी चीजें बात होती है ना, तो गूगल उसको जहाँ प्रायोरिटी देना है जिस सेक्शन में देना है वो उसको ऑटोमेटिक देना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो समझता है ना कि इसी चीज के बारे में वेबसाइट है तो क्यों ना उसको वहीं पे रखा जाए जहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन मैं इसका एक्सेप्शन भी बोल सकता हूँ, जैसे केमिस्ट्री में हर चीज का एक्सेप्शन होता है, एसईओ में भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज करके आप रैंक करा लेते हो, बाकी आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाते हो जिस पर हर तरीके का कंटेंट रखते हो तो रैंक नहीं हो सकता, ये बहुत ही गलत है। इसलिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है medium.com, आपको पता होगा मीडियम पूरा हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट नीस, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर ब्लॉग लिखे जाते हैं, फिर भी उनके पास मिलियंस ट्रैफिक्स है, वो भी ऑर्गेनिक आ रहा है, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक आ रहा है, ठीक है। तो अब सोचो कि वो नीज के ऊपर नहीं है, वो इतना ट्रैफिक बिल्ड कर रहे हैं तो वो कैसे बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, उसका एक निचोड़ भी ये भी है कि वो वेबसाइट्स ये हैं कि वो अथॉरिटी वेबसाइट आज की डेट में बन गई हैं, इसलिए गूगल उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि आप अगर नीज ओरिएंटेड वेबसाइट बना रहे हो या पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बना रहे हो तो साथ में आपको अथॉरिटी वेबसाइट भी बनानी है, ताकि आपको अथॉरिटी वेबसाइट से फाइट करने में आसानी हो जाए।
ओके, अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी वेबसाइट बनानी है, लाइक जैसे कि
मतलब कि आपको मतलब अथॉरिटी वेबसाइट का मतलब कि जब लोग रिसर्च कंटेंट ढूंढे ना तो आपके वेबसाइट को रेफरेंस दे, कहने का मतलब यही है।
ओके, समझ गए। जैसे हम नील पटेल के ब्लॉग का रेफरेंस देते हैं,
जैसे नील पटेल का हम देते हैं, बैकलिंको का देते हैं, एचआरएफ का देते हैं, मौज का देते हैं, तो वो अथॉरिटी वेबसाइट बन गई है आज की डेट में। अथॉरिटी वेबसाइट कैसे बनी, वो हम ही जैसे लोगों की वजह से बनी है। हम जब ब्लॉग लिखते हैं, रिसर्च करते हैं तो उनके रेफरेंसेस देते हैं, जब उनके रेफरेंसेस देते हैं तो जो उनकी क्वालिटी कंटेंट है वो बहुत धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा अथॉरिटी होगी, बैकलिंक मिल रहा है उनको।
या समझ गए। तो अभी लाइक इसके बाद बैकलिंक्स आती है, अभी तक ऑन पेज हमारे कुछ चीजें बाकी ऑन पेज।
ऑन पेज में मैं मुझे लगता है ये इतना अभी सफिशियंट है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये है कि जैसे मैं बताने लगूंगा तो मैं बहुत बताऊंगा तो वो बाकी टाइम में वो सारी चीजें कवर नहीं हो गए, तो थोड़ा सा और मैं बताता हूँ कि जैसे कंटेंट की लेंथ पे आप जरूर फोकस करो। मतलब ये भी गलत है, मैं ये भी बोल रहा हूँ अभी भी, ये भी गलत है सोचना कि छोटे कंटेंट रैंक नहीं होते, लेकिन हाँ आप ये ट्राई करो, पहले से ट्राई करो कि कम से कम कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े आपको। बाद में ये ना सोचो कि छोटा कंटेंट लिखा था फिर अपडेट करना पड़ रहा है फिर अब रैंक नहीं हो रही है, तो अब स्टार्टिंग से डिटेल कंटेंट लिख के चलो और लेंथ इतना रखो उसको, ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर रखो आप लेंथ, चाहे वो इवन सर्विस पेज ही क्यों ना हो। मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं सर्विस का पेज है तो इतना लंबा लेंथ क्यों रखें इसका, इतना डिटेल में समझाने की क्या जरूरत है, वो तो आएंगे और हमें कॉल करेंगे, लीड आएगी, बट आप सोचो ना जब तक रैंक नहीं होगी तब लीड कहाँ से आएगी।
एग्जैक्टली,
तो लीड लाने के लिए तो रैंक करा रहे, रैंक कराने के लिए कॉन्टेंट बिल्ड कर रहे, कॉन्टेंट बिल्ड करते टाइम में तो लेंथ हमें लंबी रखनी है ताकि वो कंटेंट रैंक हो सके। तो कंटेंट की लेंथ पे हमें फोकस करना है, प्लस साथ में इमेजेस जरूर यूज करो आप। मतलब इसलिए नहीं कि इमेजेस ऐड करने से वेबसाइट खूबसूरत हो जाता है, उसके पीछे रीजन मेरा जो लॉजिक है कि मेरा एक एक ब्लॉग रैंक हुआ था काफी टाइम तक, उस पर बहुत अच्छा ट्रैफिक आता था, तो उसमें मैंने एक एक इन्फोग्राफिक बनाया था बहुत अच्छा, मतलब अपनी एक इमोजी बनाई थी, उसमें मैंने लिंक करके बताए थे सीधे, वो उस इमेज को बहुत सारी वेबसाइट यूज करती थी, मतलब वो पर्टिकुलर वो एज इट इज इमेज यूज करती थी और बैकअप में मुझे रेफरेंसेस देती थी। तो फायदा ये हुआ कि वे पर्टिकुलर वो ब्लॉग वो अथॉरिटी ब्लॉग बन गया था।
ओके
ठीक है, तो इमेजेस यूज करने का ये भी फायदा है कि कंटेंट की क्वालिटी तो बढ़ती है, साथ साथ में गूगल इमेजेस से जो लोग जब गूगल इमेजेस पिक करते हैं ना, तो वो आपकी वेबसाइट का बैकलिंक भी पिक कर लेते हैं आपसे, मतलब आपको रेफरेंसेस भी देना स्टार्ट कर देते हैं, इससे दोनों फायदा हो जाता है, ऑन पेज का भी फायदा हो गया, ऑफ पेज का भी फायदा हो गया।
ओके, मतलब हम इमेजेस भी यूज करें, मीडिया फाइल चूज करें हमारे,
जितना ज्यादा यूज करो उतना, मतलब रिलेट करो आप। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर जो सबसे अच्छा ब्लॉग जो मुझे पसंद है वो सौरभ जन का है, क्योंकि आप उनके कभी भी सुनो, मतलब बहुत मुझे बड़ा फनी लगता है जब भी पढ़ता हूँ मैं, तो कार्टून यूज करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कितने प्यारे यूज करते हैं वो, और जो उनका जो बात करने का तरीका ना ब्लॉग के थ्रू, मुझे बहुत पसंद है, मतलब पर्सनली मैंने जब से अपना करियर स्टार्ट किया ना, तब से मैं पढ़ रहा हूँ और अभी भी पढ़ता हूँ। इस वजह से नहीं कि हम लोग सिमिलर जोन में काम करते हैं या फिर सेम एजेंसी चलाते हैं, नहीं नहीं, जो चीजें अच्छी हैं वो अच्छी हैं
जी,
उसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं वो हमारा कॉम्पिटिटर है, तो ये हमें किसी के साथ वैसे नहीं, मतलब आप मतलब रिलेट कर सकते हो इस चीज से कि वो लोग कितना काम करते हैं ग्राफिक्स के ऊपर, कितना कॉन्टेंट के ऊपर, कि पढ़ने के बाद लगे कि यार ये चलो मैं भी यूज करता हूँ ऐसे ग्राफिक्स, तो क्या पता उन्हीं का उठा ले।
Exactly.
जब उनका उठाएगा तो ऑब्वियस सौरभ सर का मतलब सारा वो वेबसाइट का अथॉरिटी वेबसाइट बन जाएगा।
अच्छा, हम उनको क्रेडिट देंगे तो सोर्स लिखेंगे,
सोर्स लिखेंगे तो मे बी बैक नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि इमेज वैसे ही इमेज की यूआरएल कॉपी कर लेते हैं लोग और उसको अपनी जब वेबसाइट में पुट ऑन करते हैं तो इमेज फेच करके इमेज तो आ जाता है, लेकिन साथ साथ में वो जब इमेज के साथ साथ वो बैकलिंक भी आ जाता है, मतलब आप जब राइट क्लिक करके देखोगे ना कभी चेक करना, तो वो इमेज का जब भी यूआरएल चेक करोगे तो वो पुराना वाला यूआरएल होगा जहां से उसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है।
ओके, वहां पे मतलब लिंक हो जाता है। ऑसम।
हाँ, कोई वो यूआरएल से कॉपी करके वो पेस्ट करते हैं ना, तो इस वजह से वो आ जाता है, अगर डाउनलोड करके वो फिर से अपलोड करते हैं फिर वो यूआरएल नहीं आता है।
ऑसम। तो मतलब अभी हमने कंटेंट का बोल दिया, फिर आपने बोला कि इमेजेस भी ऐड करने हैं, तो उसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है?
नेक्स्ट भी तो लास्ट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट तो बोल सकते हैं, बट लास्ट भी बोल सकते हैं मेरे हिसाब से, उसके बाद तो फिर रिपीट होंगी चीजें, मतलब जो भी चीजें बोली वो रिपीट होंगी, कि आप नए कंटेंट वैसे ढूंढोगे बनाओगे फिर उसको अथॉरिटी ब्लॉग बनाओगे, तो लास्ट बोल सकता हूँ वो है बैकलिंक बनाना, बैकलिंक के ऊपर काम करना। ठीक है, जितनी अच्छी बैकलिंक बनाओगे आप उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट को प्रेफरेंस मिलेगा। तो बैकलिंक की मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ ताकि बहुत रिलेटेबल हो और लोगों को जल्दी समझ में आए कि बैकलिंक की इम्पोर्टेंस क्या है, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ। आप सोचो कि जैसे आपके घर में आप दो भाई हो, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप दो भाई हो, आपके घर में कोई रिलेटिव आया, आपके घर में कोई रिलेटिव आया तो आपकी पूरी फैमिली मिलके आपकी तारीफ कर रही है, आपके भाई की तारीफ नहीं कर रही। तो जो नया रिलेटिव आया वो समझ लो कि वो गूगल है, ठीक है, और जैसे घर में इंटर करा उसने और सब लोग आपके आपकी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया, आपके भाई की तारीफ नहीं कर रहे, तो गूगल को क्या समझ में आएगा?
मतलब मेरी अथॉरिटी ज्यादा,
आपकी अथॉरिटी ज्यादा है या फिर आपको रेफरेंसेस ज्यादा दिए जा रहे हैं, आपकी तारीफ ज्यादा हो रही, मतलब क्या है कि जब गूगल से कोई चीज पूछी जाएगी ना कि इनके घर में कुकरेजा की फैमिली में या कुकरेजा की फैमिली में दोनों बेटे में से कौन सा सबसे अच्छा बेटा, होनहार बेटा है, तो वो बोलेंगे कि पीयूष सबसे होनहार है, तो गूगल उसको प्रेफरेंस दे रहा है, समझ गए आप? अब इसको बैकलिंक से रिलेट करो,
रियल एग्जांपल था। जी जी, लाइक अगर अब इसको जितने रेफरेंसेस मिलेंगे वो उसको ज्यादा प्रेफर करेगा।
हां, तो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा तो देना ही है, बट साथ में ये है कि क्वालिटी रेफरेंसेस भी देना। अब क्वालिटी के लिए एक और रेफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ कि वही गूगल जो रिलेटिव है आपके कॉलोनी में घुसता है, ठीक है, और जो कॉलोनी के सबसे हेड पर्सन है, जो मतलब कि जो अथॉरिटी लोग है, जो सबसे ज्यादा नामी उमी है, सबको जानते हैं आपके रिलेटिव, और जैसे वो घुसते हैं तो सब लोग पीयूष के बारे में बात कर रहे हैं, सब जो बड़े बड़े लोग हैं कि पीयूष ने ये कर दिया, पीयूष ने ये कर दिया, पीयूष के बारे में ये अच्छा है, पीयूष के बारे में अच्छा है। अब जो रिलेटिव आएगा, मतलब जो गूगल आ रहा है आपकी कॉलोनी में, तो वो क्या सोचेगा, वो घर में घुसते ही उसको पता चल जाएगा कि पीयूष होनहार लड़का है।
अच्छा, समझ गया।
तो ये है कि पूरी कॉलोनी का ना बता के आप कॉलोनी के कुछ मेंबर्स को, कुछ जो हेड अथॉरिटी है, उनको आप चीजें बताओ, उनके थ्रू कराओ कि हाँ आप अच्छे हो, तो अब उस गूगल को सबसे या फिर आपके रिलेटिव से सबसे पूछने की जरूरत नहीं है, उसने उनका रेफरेंस ले लिया, उन्होंने अच्छा बोल दिया, मतलब हाँ ये अच्छे हैं।
ओके, समझ गया, समझ गया। और एक इसमें ये भी चीज आती है ना कि वो कभी कभी कोई हमको खराब वेबसाइट से भी रेफरेंसेस आते हैं, मैंने सुना था कुछ, लाइक मैं एसईओ में इतना हूँ नहीं कि फिर वो गूगल के इसमें बैकलिस्ट हो जाती है हमारी जो भी हमारा ब्लॉग है। तो
मैं इसका समझाता हूँ ना, इसीलिए मैंने बोला ना कि आप अथॉरिटी वेबसाइट से आप मिल जाएगा तो उसको जरूरत नहीं है। तो उसके पीछे लॉजिक ये है ना कि बैकलिंक का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये कि जब बहुत सारी वेबसाइट्स एक पर्टिकुलर वेब पेज को एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रेफरेंसेस देती है तो गूगल उनको समझ में आता है कि हाँ ये पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर इस वेब पेज को रैंक कराना, क्योंकि ये अथॉरिटी वेबसाइट इसके बारे में बात कर रही है, तो क्यों ना मैं इस वेब पेज को अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करा दूंगा तो मेरे यूजर्स को, जो गूगल के पर्टिकुलर यूजर्स हैं, उसको अच्छे से अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब स्पैमी बैकलिंक्स बन जाते हैं या फिर कुछ ऐसे रैंडम बैकलिंक बन जाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, आप सर्च कंसोल में जाओ और उनको सारे को डिसवाउ कर सकते हो, आप मतलब सारे बैकलिंक को गूगल को दे सकते हो, सबमिट कर दो कि ये बैकलिंक मुझे नहीं चाहिए, तुम हटा दो उसको, तो वो हटा देता।
अच्छा ओके, ये भी चीज होती है,
मतलब इतना कोई टफ नहीं है, बहुत कुछ नहीं, यूट्यूब पे जाओ सर्च करो हाउ टू रिमूव स्पैमी बैकलिंक फ्रॉम वेबसाइट फ्रॉम सर्च कंसोल, आपको 500 वेबसाइट ब्लॉग्स वो वीडियोस मिल जाएंगे, इजीली आप कर सकते हो, बहुत आसान टास्क है।
तो काफी अच्छा एग्जांपल देके आपने समझाया कि बैकलिंक एग्जैक्टली होता क्या और क्यों काम आती है, कि उसमें रेफरेंसेस मिलते हैं तो गूगल के सामने अथॉरिटी बढ़ती है और रैंकिंग हमारी उस हिसाब से हमारी बढ़ती है। ऑसम, तो बैकलिंक हम बना रहे हैं, बैकलिंक से आप कुछ अगर तरीके भी बता दो कि इस तरीके से हम कुछ दो या तीन तरीके जिससे हम बैकलिंक ले सकते हैं और कहाँ कहाँ से हमको लेनी चाहिए।
देखो बेसिकली ना मैंने जैसे बताया ना कि हम लोग काम करने का मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है, मेरा थोड़ा सा चेकलिस्ट अलग है। तो जैसे मेरे पास किसी मतलब पर्टिकुलर मेरी वेबसाइट हो या क्लाइंट की वेबसाइट हो तो हम लोग ना फेज वाइज काम करते हैं, मतलब फेज वाइज एक फेज दो फेज तीन फेज ऐसा करके हमने डिवाइड कर रखा है। सपोज कि अगर कोई प्रोजेक्ट एक साल के लिए आता है तो हम उसको दो फेज में या चार फेज में कर सकते हैं। फेज का मतलब क्या है कि हम 3 महीने का टाइम लेते हैं, 3 महीने या 6 महीने का, इस तरह का टाइम फ्रेम बनाया। इस टाइम फ्रेम में हमें डिसाइड करते हैं कि क्या क्या काम करना है। जैसे रिसर्च करना है तो रिसर्च तो मान लो अगर 1-2 महीने में कंप्लीट हो सकती है, कंटेंट भी मान लो जल्दी जल्दी बिल्ड किया जा सकता है। तो जो प्लानिंग की जाती है वो बैकलिंक के ऊपर ही काम की जाती है, क्योंकि एक दिन में बैकलिंक आप सारी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर बना भी देते हो तो वो बहुत गलत है आपके लिए, आपकी वेबसाइट के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले सारे बैकलिंक्स जो पॉसिबल बैकलिंक्स है सारा एक जगह कलेक्ट करते हैं। अब सपोज कि मेरे पास 5 तरीके की बैकलिंक्स मिल गई, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइप की मिल गई कि जो न्यूड बैकलिंक्स है, मतलब कि सिर्फ उसी यूआरएल पेस्ट किया गया बैकलिंक है, उसको हमने एक जगह रख लिया। फिर मुझे डायरेक्टरी वाली बैकलिंक की लिस्ट मिल गई, फिर मुझे सोशल बुक मार्किंग वाली बैकलिंक एक जगह मिल गई, फिर गेस्ट ब्लॉगिंग वाली बैकलिंक एक जगह मिल गई, इमेज वाली बैकलिंक एक जगह मिल गई। इस तरीके से कैटेगरी बना ली मैंने, शीट अलग अलग बना ली। अब मैं ये देखूंगा कि उसमें से कौन सी बैकलिंक फर्स्ट बनानी है जो इजिली ग्रैप हो सके, जिससे मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। सपोज कि सबसे आसान तरीका है बैकलिंक लेने का, सबसे जो आसान तरीका है बैकलिंक लेने का वो है कमेंट ब्लॉगिंग या डायरेक्टिव ब्लॉगिंग या सोशल बुक मार्किंग। ये मैं ये नहीं बोलूंगा इससे रैंक हो जाएगी आपकी वेबसाइट, बट ये है कि आपको वेबसाइट को एक अच्छा पुश मिल सकता है, मतलब इनिशियल लेवल पे अगर इस टाइप की बैकलिंग आप बनाते हो तो एक अच्छा पुश मिलेगा आपकी वेबसाइट को, एटलीस्ट टॉप 100 में तो आए, तब तो आप उसको टॉप 10 में लेके आओगे। तो इसको पुश लाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पेज में इस तरीके से काम करते हैं, कॉन्टेंट बिल्ड किया, रिसर्च किया। तो कुछ ऐसे फ्री की बैकलिंक या फिर कुछ ऐसी इजिली बैकलिंक्स होती हैं, जैसे प्रोफाइल बैकलिंक हो गया, फॉरम बैकलिंक हो गया, कमेंटिंग हो गया, ये कुछ ऐसी टाइप की बैकलिंक होती है जिसमें से हम इस भी ये भी देखते हैं कौन सी स्पैमी है कौन सी नहीं है, मतलब स्पैम स्कोर चेक करके फिर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि 3 महीने के अंदर कॉन्टेंट के साथ साथ एक हल्का सा पुश भी मिलता है उस कॉन्टेंट को या फिर उस वेबसाइट को। तो फ्री की बैकलिंक मैंने जैसे जिस टाइप की बताई वो बनाना आप स्टार्ट कर सकते हो, वो आप जिस दिन से आपकी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट बिल्ड होना लगे उसी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको अगर डर लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो आप प्रोफाइल बैकलिंक से स्टार्ट कर सकते हो, प्रोफाइल बैकलिंक से या वेब 2.0 से आप स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें क्या होगा कि आप मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं आप अपनी वेबसाइट को पटका किसी एंकर पर पुश कर रहे हो रैंक कराने के लिए, तो आपकी अथॉरिटी भी बढ़ रही होगी, आपको पुश भी मिल रहा होगा, प्लस आपके कॉन्टेंट आपका कॉन्टेंट का भी पता चलेगा कि उसके कौन सी मतलब किस टॉप 100 में कहाँ पे आ भी रही है कि नहीं भी आ रही है। उसके बाद आप प्लान यही कर सकते हो कि जैसे इमेज की बैकलिंक कैसे बनानी है, तो इमेज के लिए वही बोला मैंने कि जैसे आप अच्छे इन्फोग्राफिक्स यूज करते हो तो आप सिमिलर वेबसाइट को अप्रोच कर सकते हो कि यार तुमने ये वेबसाइट को लिंक दिया इस इमेज को, मेरे पास भी इससे अच्छा इमेज है तो तुम क्यों ना मेरा प्रेफर करो, इस तरीके से बात करके भी की जाती है। प्लस इमेज सबमिशन के कुछ वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे इमेज सबमिट करके जैसे पिंटरेस्ट है, इस तरह बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप इमेज सबमिट करके इमेज बैकलिंक ले सकते हो, ठीक है। तो और भी टाइप की बैकलिंक होती है, लेकिन जो सबसे हार्ड है और जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है वो गेस्ट ब्लॉगिंग है,
ठीक है।
आप लोगों को वन बाय वन अप्रोच करते हो, लोगों से बात करते हो। आज के डेट में तो हम लोग तो एजेंसी रन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, पैसे लोग पैसे मांगते हैं, कोई कुछ मांग कहता है, कोई कुछ कहता है। तो पॉइंट ये है कि वो जब अपनी सारी चीजें बिल्ड कर रही है, अगर आप कुछ प्लान बनाया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वेबसाइट को रैंक कराने के लिए मुझे और कितना पुश देना है। सपोज कि अगर मुझे 10 गेस्ट ब्लॉगिंग की जरूरत है, तो आपको पता चल गया कि हाँ फर्स्ट पुश में तो इतना आ गया, अब तो गेस्ट ब्लॉगिंग कर देते हैं, तब तक वेबसाइट का जो वेब कॉन्टेंट भी वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया, ठीक है। तो आप गेस्ट ब्लॉगिंग करने के लिए आप कॉम्पिटिटर का बैकलिंक आपके पास पहले से ही है, तो आप देख सकते हो कि उसमें कौन सा मतलब कि आसानी से बनाया जा सकता है, कौन सा थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, किसी को पैसे देने हैं तो पैसे दे के बनवाना है, या किसी को कन्विंस करके बनाना है, या किसी को इंटरचेंज बैकलिंग बनाना है, तो वो बात करके ही होगा। तो ये प्रोसेस आगे आपका लंबा हो गया। तो फर्स्ट 3 महीने में आपने सारी चीजें कर ली, टेक्निकल कर लिया, और आपने फर्स्ट में टेक्निकल कर लिया, बाकी ऑन पेज कर लिया, रिसर्च कर सारी चीजें कर ली, ऑलमोस्ट करने में आपको 2-3 महीना लग जाएगा, प्लस साथ में आपने कुछ बैकलिंग भी बना ली। तो जब आप सेकंड फेज में आते हो, जैसे हम लोग जब सेकंड फेज में जाते हैं, तो हमें पता है कि अब क्या करना है, क्यों, तो बाकी चीजें तो बिल्ड कर ली, अब किस डायरेक्शन में मूव करना है वो हमारा सॉर्टेड हो गया ना, तो वो आसान हो जाता है फिर हमारे लिए, फिर वो रिजल्ट इजिली आ पाता है, हम रिजल्ट दिखा भी पाते हैं, अगर अपना है तो रिजल्ट देके खुश हो जाते हैं, क्लाइंट का है तो खुश करा देते हैं उनको।
ऑसम। तो और एक चीज इसमें थी, जैसे कि आपने बोला कि सबसे हार्ड तरीका जो है और सबसे अच्छा तरीका भी है जिससे ऑथोरिटी बिल्ड होती है, जो कि है गेस्ट ब्लॉगिंग, पर वो थोड़ा आपने बोला मुश्किल भी है, पर एक अच्छा इफेक्टिव तरीका है। तो गेस्ट ब्लॉगिंग में एक चीज मुझे ये पूछनी थी, लाइक कंटेंट डुप्लीकेशन के हिसाब से आप उसको काउंट कर सकते हो। लेट सपोज मेरा एक ब्लॉग है piyushshukla.com, जहाँ पे मेरा एक पॉडकास्ट का सेक्शन भी है, फॉर एग्जांपल ले रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग है, जहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है हाउ टू स्टार्ट अप पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल, या कोई और पकड़ लो, चलो मेरा पर्सनल एग्जांपल लेते हैं, हाउ टू स्टार्ट अप पॉडकास्ट मैंने लिया। फिर आपका एक ब्लॉग है या ऐसे और 10 लोग है अलग अलग, जिसका डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग है, किसी का क्या है रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट भी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है, तो मैं आपको रीच आउट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि गेस्ट ब्लॉगिंग आपके इसमें मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, आप बोलोगे ओके यस आई विल लव टू कंट्रीब्यूट, लेट्स सपोज आपने हाँ बोल दिया, और हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज पॉडकास्ट या हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट या 5 स्टेप्स टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट। पर वो सेम ब्लॉग मेरे इसमें भी है, वो अब तक piyushshukla.com पे भी सेम ब्लॉग है, फिर आपके साथ जब मैं गेस्ट ब्लॉगिंग करूंगा कंट्रीब्यूट, तो उसमें कंटेंट डुप्लीकेशन का कुछ इशू नहीं होगा?
नहीं, उसमें तो आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने सेम कंटेंट बनाया है, ठीक है, और आप सामने वाली बड़ी वेबसाइट से अपने लिए रेफरेंस जनरेट कर रहे हो, मतलब उसके पास भी सेम है, आपके पास भी सेम है, ठीक है, लेकिन वो आपको रेफरेंस दे रहा है, तो मतलब उसका कंटेंट आपको रेफरेंस आपको रेफर कर रहा है, तो रेफर जिसको किया जाता है वो उसकी प्रायोरिटी बढ़ती है ना।
ओके, मतलब वर्ड टू वर्ड सब सेम होगा, लाइक मेरे इस पे लेट्स सपोज लिखा
है, वर्ड टू वर्ड सेम नहीं करना चाहिए, वो गलत होता है, अब वर्ड टू वर्ड कभी भी सेम मत करो, वो फिर आपके लिए मतलब नुकसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर उसकी अथॉरिटी वेबसाइट होगी तो उसका रैंक आपको रेफरेंस देने के बावजूद भी उसके जल्दी रैंक हो सकता है। तो आप ट्राई करो कि मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, पॉडकास्ट के ऊपर अगर आपको रेफरेंस बैकलिंग लेना है और डिजिटल मार्केटिंग से लेना है, तो आप इस तरीके से टॉपिक ले लो ना, हाउ टू ग्रो योर डिजिटल मार्केटिंग थ्रू पॉडकास्ट, टॉपिक बना लो, ठीक है, या हाउ टू मतलब किस तरीके से टॉपिक ले सकते हो,
मुझे क्विकली जल्दी याद नहीं आता, एग्जांपल
हाउ टू प्रमोट योर पॉडकास्ट या हाउ टू ग्रो योर पॉडकास्ट, टॉपिक तो हमने चेंज कर दिया, आपको रैंक किसी और पे करना पड़ा, आपको मेन अपने सब टॉपिक ले लिए ना, सब टॉपिक पे आप बनाओ गेस्ट पोस्ट में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो सेम टॉपिक हमारे इस पे रहा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइक क्योंकि मेरा निश बेस्ड वेबसाइट है, सिर्फ पॉडकास्ट बेस्ड वेबसाइट है, ब्लॉग है, जहाँ पे सिर्फ पॉडकास्ट की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रमोशन की बात हुई होगी, बेनिफिट्स की बात हुई है, एजेंसीज की बात हुई, सबकी हुई है, तो ऐसे कुछ डुप्लीकेशन नहीं होगा ना, हम ऐसा कर सकते
हैं,
मेरे आप पे 2000 वर्ड्स का आर्टिकल है और जो मैं गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आप पे सिर्फ 500 टू 700 वर्ड्स का आर्टिकल है, लाइक समरी।
गेस्ट पोस्टिंग एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि दो मतलब कि एक तो है कि आप इतना अच्छा कंटेंट बिल्ड कर दो कि लोग ऑटोमेटिकली आपको रेफरेंस देना स्टार्ट करो, उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है, अगर वो जिस दिन होना स्टार्ट हो गया, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मेरे एक क्लाइंट के पास मेरा मतलब एक प्रोजेक्ट आया और वो हम नीचे वेबसाइट पे काम कर रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट डोमेन जो अथॉरिटी वेबसाइट थी, मतलब जो मेन वेबसाइट थी वो एक्चुअली एफिलिएट की वेबसाइट थी, उसके डोमेन में सिर्फ और सिर्फ .com और .co का डिफरेंस था, मतलब सिर्फ एम का डिफरेंस था, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम थी दोनों वेबसाइट, और इसकी वेबसाइट पे ज्यादा अच्छा कंटेंट था, ज्यादा लेंथी कंटेंट था, और हमने इसको थोड़ा सा पुश किया और रैंक होना स्टार्ट कर दी, आप विश्वास नहीं मानोगे, जो गेस्ट पोस्टिंग के लिंक्स बनती है वो मेन वेबसाइट पर नहीं मिलती, एफिलिएट वेबसाइट पर मिलती है।
ओके ऑसम,
तो क्या हो गया,
अच्छा हम कंटेंट लिखेंगे और डिटेल लिखेंगे तो उसके ऊपर
मतलब उससे अच्छा जो रेफरेंसेस जनरेट होता है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं है, आप कितना भी एफर्ट डाल लो। बट हाँ, मतलब हर चीज के दो साइड होते हैं, आज के डेट में कुछ भी चीज फ्री नहीं रह गया। आप जिनको जिनको समझ में आता है कि नहीं इसी चीज से बिजनेस लाना है और इसी चीज से मुझे ग्रो करना कैसे भी करके, तो वो पेड बैकलिंग खरीदते भी है, न्यूज चैनल वाली वेबसाइट से, बड़ी बड़ी वेबसाइट से वो पेड बैकलिंग लेते हैं। जो स्पॉन्सर्ड नहीं शो करती हैं वो एंकर पे लेके वो फटाफट काम करते हैं, क्वालिटी बैकलिंग खरीद लेते हैं।
ओके
तो तरीका अलग अलग है, आपको कौन सा प्रेफर करना है, आपका बजट कितना अलाउ करता है, सब कुछ डिपेंड इसी चीज पे करता है। मतलब मैं कितना भी चिल्ला लूं, मैं कितना भी बोल लूं ये करो वो करो, नहीं, लेकिन एंड ऑफ द डे सारा गेम बजट के ऊपर होता है। आप कितना इन्वेस्ट करते हो किसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए,
बजट के ऊपर होता है और डिटेल कंटेंट कितना लिखा है उसके ऊपर।
हाँ, डिटेल का तो ऑब्वियस है ना, अगर आप खुद से ब्लॉगिंग नहीं करते हो तो ऑब्वियस दूसरे से लिखवाओगे तो बजट अलाउ करेगा। आप कोई 250 में लिख के आपको दे रहा है तो आप सोच रहे हो रैंक कर, किसी के लिखवाने के लिए आपको 2000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।
मतलब क्वालिटी कंटेंट चाहिए, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना रैंकिंग हमारा बढ़ेगा।
अब नहीं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं है ये डिपेंड करता है
क्वालिटी होगा,
कितना आप कॉन्फिडेंट हो चीज को लेके। वो इन्वेस्टमेंट इस चीज से नहीं डिपेंड करता कि आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो आप ज्यादा बिजनेस करोगे। मैंने जैसे एफिलिएट का एग्जांपल दिया कि उसने सिर्फ कंटेंट बिल्ड करी लेकिन जो मेन वेबसाइट है उसको रेफरेंस ही नहीं दे रहे लोग, डिपेंड ये नहीं करता वो, आप कितना उसको लेके चल रहे हो। मतलब सोचो कि उस बंदे ने सोचा कि हाँ इसको मैं जो पॉजिटिवली थोड़ी सी हाई एक बार पुश करना है टॉप 10 में, जैसे पुश हो जाएगा तो ऑटोमेटिक काम कुछ होने लगेगा। तो हमने ऐसी प्लानिंग कर दी, अब रेफरेंस जनरेट होने लगे तो ऑब्वियस है कोई खर्चा ही नहीं है फिर तो, अब हमें जरूरत ही नहीं बैकलिंक की।
एग्जैक्टली, समझिए। तो इसके बाद फिर अभी आपने से बताया कंटेंट क्रिएशन से लेके प्लानिंग से लेके कंप्लीट रिसर्च से लेके आपने बैकिंग से बताया और अथॉरिटी कैसे हम बढ़ाएंगे हमारी वेबसाइट की और कैश ब्लॉकिंग कैसे करेंगे आपने वो बढ़ा। तो इसके बाद कोई स्टेप है या ये इनिशियल स्टेज के लिए काफी था इतना एसईओ चेकलिस्ट?
देखो और भी चीजें हैं एडवांस, मतलब कि वैसे तो एसईओ ऐसा टॉपिक है जितनी बात करो उतनी कम है।
जी मतलब इनिशियल स्टेज के लिए ये स्टेप्स काफी थे, इसमें भी लाइक और भी हमको करना चाहिए एज अ जिसका पहली बार एसईओ हो रहा है?
देखो जो पहली बार एसईओ कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा वो पढ़ेगा उतना ज्यादा उसको अच्छी चीजें पता चलेगी। मतलब जैसे मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि डोमेन अथॉरिटी एक टर्म है, शायद आपने भी सुना होगा कि जितनी ज्यादा डोमेन अथॉरिटी होती है उतना ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। मैं इसको कुछ नहीं समझता हूँ, इवन कि गूगल भी कुछ नहीं समझती, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी बनाने वाली कंपनी है मौज। मौज ने एक अल्गो बनाया है जिसके ऊपर वो स्कोर देता है, वो आपके एसईओ स्कोर के ऊपर हो सकता है, कुछ भी कोई जो भी उनका एल्गोरिथम उसके ऊपर हो सकता है। अगर मान लो कि वो स्कोर गूगल ने फॉलो करे या फिर उससे रिलेटेड ना हो तो गूगल अलग चलता है, वो अलग चलता है, गूगल क्यों किसी की माने? इवन की डोमेन अथॉरिटी, बहुत कम डोमेन अथॉरिटी वाले भी अच्छा ट्रैफिक जनरेट करती हैं और बहुत क्वालिटी ट्रैफिक जनरेट करती हैं। तो बस बिगनर के लिए यही मेरा टिप्स है कि सिर्फ बिलीव करो, हिट एंड ट्रायल, सब बस जितना पढ़ो अप्लाई करो सीखो, नई नई चीजें खुद सामने आ जाती है। जैसे मैंने देखो इतनी सारी चीजें मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पढ़ पढ़ के आ जाती है, मैंने किया होगा, टेस्ट किया होगा कुछ तो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिसकी पेनल्टी भी लगी है हमें सीखने के टाइम पे, क्योंकि हमने बस रैंडम तरीके से सारी चीजें लगाने की कोशिश करी रैंक कराने के चक्कर में। ज्यादा ज्यादा आप पुश करते हो ना, जब ओवर ऑप्टिमाइज करते हो वेबसाइट तो भी प्रॉब्लम है आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं, 200-300 फैक्टर, मतलब जितना भी आप अप्लाई करो उतना कम है। बट ये है कि सारी चीजें एक बार में नहीं अप्लाई करनी, इसीलिए मैं फेज वाइज की बात कर रहा हूँ कि एक फेज में कुछ काम करो, उससे रिजल्ट देखो, उससे जो पुश मिलता है सेकेंड फेज में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, नई नई चीजें ट्राई करने की कोशिश करो। बट नई चीजों के चक्कर में कम से कम स्पैम देखो कि कितना स्पैम स्कोर आपकी वेबसाइट का जनरेट हो रहा और कौन से आउटडेटेड कंटेंट है, कौन सा कितना भी पुश करने के बाद वो रैंक नहीं हो रही तो हटाओ उसको, कोई जरूरत नहीं इतने ज्यादा कंटेंट्स की आपकी वेबसाइट को। तो बहुत सारी चीजें हैं बिजनेस के लिए, ये पढ़ो अप्लाई करो, बट थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि एसईओ को कितना भी आप जल्दीबाजी करेंगे 2 महीने पहले से रैंक नहीं करा सकते। अगर आपका नया ब्लॉग है तो अथॉरिटी ब्लॉग है या पुराना ब्लॉग है तो पॉसिबिलिटीज हैं, बट नए ब्लॉग के साथ इतनी जल्दी रैंक नहीं कराया जा सकता है। तो टाइम ले और एक एक चीजों पे काम करें। मैक्सिमम चीजें जो हैं एसईओ की वो सब कुछ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको अपने हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, सबको एक जगह रख के काम करते जाना है, रैंक हो जाती है वेबसाइट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी वेबसाइट रैंक कराना चाहिए, पर रैंक हो जाती है वेबसाइट। हाँ, जो चीजें नहीं रैंक हो रही उसके पीछे भी नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आप सारे एफर्ट लगा के ही रैंक करा सकते हो, नहीं। कभी कभी ऐसी वेबसाइट होती है, मेरे पास खुद पर्सनली कुछ ऐसी वेबसाइट है जिनको सारी चीजें हमने करके ट्राई करके देख लिया, पैसे वैसे सब लगा के देख लिया, रैंक नहीं हुई तो नहीं हुई। उससे अच्छा है कि उसको बंद करो और जो नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उससे नया ब्लॉग स्टार्ट करो, या फिर एक्सपायर डोमेन के साथ कुछ नया ब्लॉग स्टार्ट करो। मे बी जो उससे कम खर्चे में वो वेबसाइट आपको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दे, जल्दी रैंक होना स्टार्ट कर दे।
Awesome. तो काफी अच्छे आपने आज स्टेप्स शेयर किए और आपकी खुद की पर्सनल चेकलिस्ट शेयर की एसईओ की चेकलिस्ट, तो थैंक यू सो मच। और मुझे भी काफी चीज सीखने को मिली क्योंकि मैं भी अपनी बैकएंड वेबसाइट रेडी कर रहा हूँ piyushkupira.com, जहाँ पे पॉडकास्ट के बारे में सब चीजें बताने वाला हूँ कि आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हो। और आप हमारे जो इंटरव्यूज हुए, जैसे मेरा आपके साथ जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था वो, और आज जब अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो इसका भी मैं एज अ समरी आर्टिकल बोलते हैं ना, ट्रांसक्रिप्ट या छोटा सा समरी, वहाँ पे मैं सब डालने वाला हूँ, तो मुझे भी हेल्प होगी ये सब चेकलिस्ट को फॉलो करने में और रैंक करने में। ऑसम। तो एक लास्ट चीज मैं आपसे ये पूछूंगा, जैसे कि आपकी कम्युनिटी आपने एक बनाई है जो कि बहुत आजकल पॉपुलर भी हो रही है, जिसका नाम है ब्लॉगर ब्लॉगर, जो ब्लॉगिंग के लिए, तो उसके बारे में अगर आप कुछ छोटा सा बताना चाहोगे एग्जैक्टली उसमें होता क्या है और कैसे लोगों को हेल्प हो सकती है।
एक्चुअली क्या ना, थोड़ा सा मेरे अंदर है ना कि वो एक मतलब मैं इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, मे बी आप पता भी है,
जी जी
ठीक है। और दूसरा है कि मार्केटिंग मिक्स है, मतलब कि मार्केटिंग इंजीनियरिंग जब मिक्स होता है ना तो ऐसे खुरापाती दिमाग आते हैं। तो हाँ, वो मैंने एक्चुअली बनाया था किसी और पर्पज से। मैंने बनाया था कि मैं एक वेबसाइट, मतलब सोचो कि मैं आपको बताता हूँ, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं जब ब्लॉग लिखता था मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी खुद से, मैं सोचता था मैं थोड़ा सा वही ना, जब मार्केटिंग इंजीनियर दिमाग आता है तो खुरापाती दिमाग आता है। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं खुद से लिख रहा हूँ, एक दिन में मैं एक ब्लॉग लिख रहा हूँ, हफ्तों में भी कभी कभी कोई ब्लॉग नहीं तैयार हो रहा है, क्यों ना मैं ऐसी एक वेबसाइट बना दूँ जिसपे लोग कॉन्ट्रीब्यूट करें। ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था जिस टाइम पे मैं मैच्योर नहीं था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि मार्केट में या फिर और भी कैसी वेबसाइट्स हैं। तो मैंने ये सोच के बस स्टार्ट कर दिया था। फिर जैसे जैसे पैसे स्टार्ट होते गए मैंने उसको मल्टीपल यूजर्स बेस बनाया, फिर हमने उस वेबसाइट को बंद कर दिया। मतलब डोमेन काफी पुराना है, 3 साल पुराना है, अब तो पता नहीं उससे ज्यादा भी हो चुका है, बहुत पहले का है डोमेन वो। तो वो एक्चुअली मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था बोला जाए तो, मैं बहुत टाइम से वो प्लान कर रहा था कि मैं ऐसी बनाऊंगा, एक दिन बनाऊंगा, कम्युनिटी लेके आऊंगा। तो वो बंद हुआ, फेल हुआ, बंद हुआ, फेल हुआ। फाइनली हमने फिर उसको लॉन्च किया एक नए तरीके से, और फंडा ये रखा कि बेसिकली मैं वो वेबसाइट मैंने अर्न करने के लिए नहीं बनाया है कि मैं उससे बहुत ज्यादा अर्निंग करूंगा, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए बनाया है कि कोई भी नया ब्लॉगर है या कॉन्टेंट राइटर है या इवन की कॉलेज का स्टूडेंट है, वो एक ऐसी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है जहाँ पे उसको लर्निंग हो लिखने के टर्म में, उसको ब्लॉग के टर्म में उसको हम लोग पर्सनली ट्रेन कर पाए, ठीक है। तो वो सेल्फ मतलब कि आप अकाउंट बना के आप ब्लॉग तो पोस्ट कर सकते हो पर रिव्यू बेस है सब कुछ, हम लोग हमारी टीम क्रॉस चेक करती है, क्वालिटी ब्लॉग होता है तो उसको अप्रूव करती है, नहीं होता है तो वो ब्लॉगर की या फिर राइटर या नया जो भी है ना उसके एफर्ट के हिसाब से उसको ट्रेनिंग भी देते हैं हम लोग, पैरेलली उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको सिखाते हैं कि यार तुम इस ब्लॉग में ये कमियां हैं तुम्हारे अंदर, ये भी तुम चीजें इम्प्रूव करो, और उसको सिखाते हैं उसको। मतलब अभी क्वालिटी कंटेंट हमारे वेबसाइट पे भी काफी आ गया, मतलब उस पे आ रहा है। पहले था कि रैंडम कुछ भी कोई पोस्ट करता था हम अप्रूव कर देते थे, क्योंकि बोला ना मैच्योरिटी नहीं थी उस चीज को लेकर।
जी जी,
तो बल का बहुत रैंडम कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया था, अनयूजुअल कंटेंट बहुत हो गया था, अब हम उसको डिलीट भी कर रहे हैं पैरेलली, जो भी हमें कंटेंट नहीं चाहिए वो डिलीट भी कर रहे हैं। प्लस साथ में हम नए नए ब्लॉगर्स को तैयार करने की एक छोटा सा प्रयास है, समझ लो कोशिश है कि हम नए नए लोगों को जो स्टूडेंट है या फिर जो वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन कि 200 रुपए, जैसे लास्ट टाइम में बोला कि 200 रुपए लोग खर्च नहीं करना चाहते, बट एक्चुअली 200 रुपए तो चलो स्टार्टिंग का होता है, बट और भी चीजें होती हैं जो धीरे धीरे खर्च होती हैं, जो आपकी अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एफर्ट आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर वो भी बंदा नहीं अगर अफोर्ड करना चाहता है तो वो मेरी कम्युनिटी में आके ज्वाइन कर सकता है और हमसे सीख सकता है, जितनी हमारी 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 एबिलिटी है उसके हिसाब से हम उसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट के लिए ही बनाया है, बिगनर के लिए ही बनाया है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बनाया कि वो कोई बड़ा ब्लॉगर आया वो कंट्रीब्यूट करो, ऑब्वियसली उसको क्या जरूरत है मेरे ब्लॉग कंट्रीब्यूट करने का, उसका तो ऑब्वियसली उसके ब्लॉग पे बहुत ट्रैफिक आ रहा है।
Awesome. तो काफी अच्छी
काइंड ऑफ मतलब कि एक सोशल मीडिया भी बोल सकते हो कि सारे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए है, वहां पे वो आ सकते हैं, एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टेंट रीड कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस तरीके का धीरे धीरे फीचर्स हम लेके आ रहे हैं। मैं बोलूंगा नहीं कि कंप्लीट है, वो इनकम्प्लीट है, अभी बेटा वर्जन ही है, उस पर हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, अप्रिशिएशन बहुत अच्छी मिल रही है हमें उसको लेकर।
Awesome. तो उसको हम विजिट कैसे कर सकते हैं? blogger.com या
कुछ नहीं, सिंपल आप गूगल पे जाओ, blogger.com सर्च करो, इवन की एक ही डोमेन अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, कोई .in नहीं, .com भी नहीं, किसी ने कोई परचेज नहीं किया, ना ही कुछ करता है, एक ही ब्लॉग है, क्योंकि मैं उसको अथॉरिटी वेबसाइट बना रहा हूँ धीरे धीरे, और साथ में मतलब कि वो मेरे कंपनी से लिंक है, मेरे रजिस्टर्ड कंपनी से लिंक है, तो अगर कोई नाम भी यूज करता है तो फ्यूचर में मे बी मैं उसका मतलब ट्रेडमार्क भी ले लूँ, तो कोई यूज भी नहीं कर सकता है, लोगो वगैरह सारी चीजें, तो अभी तो एक ही वेबसाइट है, आप गूगल करके देख सकते हो।
जी जी ऑसम। सो गाइस, मैं हाईली आपको रेकमेंड करूंगा कि इनकी वेबसाइट, इनका जो कम्युनिटी है, उनकी कम्युनिटी blogger.com, वो जरूर आप देखिए और जरूर चेक कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पे आप अपने आर्टिकल अपलोड कीजिए, देखिए कैसी क्वालिटी है, अप्रूव नहीं भी होता तो इनकी टीम आपको ट्रेनिंग भी देगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है, एक बिगिनर्स के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अच्छा ब्लॉगर्स का सोशल नेटवर्क हम बोल सकते हैं, तो जरूर इसको चेक करना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगी, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, blogger आपको मिल जाएगा। ऑसम, सो थैंक यू सो मच विश्वकर्मा जी, शो पे आने के लिए, काफी मजा आया आपके साथ दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए, सो आई होप आपको मजा आया होगा मेरे साथ दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड करने, इन फ्यूचर हम और भी कोलैबोरेशन से करेंगे, क्योंकि आपके एपिसोड जो लास्ट टाइम हुआ था वो भी काफी हिट गया था, और आपने मुझे कैसे, जिन्होंने मुझे बताया था कि मेरा जो पॉडकास्ट है द पीयूष शुक्रिया शो, जो आपका फेवरेट पॉडकास्ट सब लोगों का, कि ये gaana.com पे भी आ गया, तो इन्होंने मुझे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी, आफ्टर ऑल ये है ही SEO के बंदे, तो इनको सब पता है कौन सा लिंक कहाँ है, तो gaana.com पे भी मेरा पॉडकास्ट है, इन्होंने मुझे बताया था, सो थैंक यू सो मच मुझे इन्फॉर्म करने लगे, कि मुझे खुद को भी नहीं पता था कि वहाँ पे भी अवेलेबल है, शायद आपने कुछ आप चेक कर रहे थे तो आपको पता चल गया वहाँ पे।
हाँ, वो एक्चुअली मैं कुछ कुछ टाइम पे मतलब कि एक्चुअली मैंने अपने नाम के ऊपर बहुत काम किया हुआ है, क्योंकि मेरा नाम थोड़ा सा यूनिक करके मैंने उसको थोड़ा सा गेम खेला, मैंने देखा जाए तो मैं उसको चेक भी करता रहता हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से पॉडकास्ट, कौन कौन से इंटरव्यू किस पोजीशंस पे है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत काम करता हूँ, तो जब अब सोचो कि जितने भी इंटरव्यूज फीचर्ड हो रहे हैं, जो भी चीजें होती हैं, तो एक क्यूरियोसिटी रहती है लेवल की, यार वो वाला इंटरव्यू आया कि नहीं आया मेरे नाम पे, ये एक होता है, मतलब एक ह्यूमन के अंदर है कि वो देखता है कि यार मेरा नाम डालने पे ये चीज आती नहीं, तो मैं ऐसे मतलब ये हमेशा से मेरे अंदर, मैं कॉलेज में था तब भी अपना नाम सर्च करता था, क्यों, क्योंकि पहले याद होगा कि पहले फेसबुक लिंक्स, सोशल मीडिया लिंक्स एक्टिव होते थे, तो वो इंडेक्स होके आते थे, आज की डेट में अब थोड़ा सा वो डाउन जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में सोशल मीडिया के लिंक्स आते थे, तो मैं तब से सर्च कर रहा हूँ अपना नाम, कि मेरा नाम डालते वो मेरे फोटो आती थी और मेरा प्रोफाइल आता था फेसबुक का, तो मैं बड़ा खुश होता था, तब से आदत सी लगी है, तो मैं सर्च मतलब देखता रहता हूँ, तो आपका लिंक मैंने देखा था, मैंने सर्च कर देखा डीपी विश्वकर्मा और आगे gaana.com मैं थोड़ा सा शॉक हो गया, मैंने कहा ये भी, ये कब से हुआ, फिर मैंने क्लिक किया तो वो आपका फीचर आ गया, तो मुझे लगा कि आपने शायद वो लिस्ट कराया होगा या फिर फीड सबमिट की होगी,
मुझे खुद को भी नहीं पता है कैसे हुआ
तो वही है, मैंने फिर तुरंत आपको बताया कि ये देखो आप, मैंने आपसे पूछा था शायद, हाँ आपसे मैंने पूछा था,
पूछा था कि gaana.com पे कैसे आया,
मैंने आपसे पूछा था,
आपने स्क्रीनशॉट भेजा मुझे एग्जैक्टली,
अब मुझे भी बताने में ऐसा लगता है कि मैं gaana.com पे भी सर्च किया जा सकता
हूं, एग्जैक्टली, सो वही, थैंक यू सो मच आपको जो बताया आपने gaana.com पे अवेलेबल, अभी और एक प्लेटफॉर्म हो गया, पहले 11 प्लेटफॉर्म था, अभी और एक बढ़ चुका है 12, शायद और भी होंगे, मैंने और देखे नहीं होंगे, मुझे भी खुद को डिस्कवर करने पड़ेंगे, पता करना पड़ेगा, और कहां कहां मेरा पॉडकास्ट लिस्ट हो गया है, शायद उन्होंने RSS फीड से किया होगा, पता नहीं कैसे किया होगा,
हां वो फीड से ही था,
वो आप
अगर उन्होंने जी। नहीं मुझे अब इंटरनली तो नहीं पता कि उनकी टीम कैसे काम करती है, पर मुझे जहां तक लग रहा है कि ऑब्वियस है आपकी, आपका पॉडकास्ट अथॉरिटी पॉडकास्ट है, ये मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता, तो
आप वो लोग आप जैसे लोगों के वजह से हो रहा है, आप जैसे बड़े बड़े लोग गेस्ट बन के मेरे शो पे आ रहे
हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बिगनर है, सब लर्नर है, जितना जितना पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया,
एग्जैक्टली, जी जी,
तो वो मैंने वो एक्चुअली उनका वो टीम का इंटरनली तो नहीं पता मुझे कि कैसे वो काम करते हैं, बट हाँ हो सकता है कि वो लोग अथॉरिटी पॉडकास्ट को की फीड को सबमिट करके वो उठा रहे होंगे, देख व्यूज के ऊपर या पॉपुलरिटी के ऊपर जो भी रीजन होगा उस हिसाब से वो उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने और लोगों को भी चेक किए थे, वो मिला ही नहीं सबके,
एग्जैक्टली, जी जी, उसके बाद मैंने जब वो पोस्ट किया मुझे काफी लोगों का मैसेज आने लग गया कि हमारा भी पॉडकास्ट है कैसे करूं, मुझे भी करना है gaana.com, मैंने उनको बोला हाँ, कि ये मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजा था,
हाँ, तो मुझे मैसेज आने लगे थे
तो लोगों को लगा कि आपने कुछ किया, क्योंकि आप SEO के बंदे हो तो आपने करके दिया, तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, और मेरे को लोग पूछ रहे थे बता बता सीक्रेट बता तेरा क्या, मेरा मेरे को कुछ नहीं पता, ये अपना हुआ है और सबका अवेलेबल नहीं, मैंने भी सर्च करके देखा तो किसी किसी का अवेलेबल था वहाँ पे,
बहुत लिमिटेड है, वही पॉपुलरिटी है, जिनकी पॉपुलरिटी है ना पॉडकास्ट की उन्हीं का वो फीड ही, उन्होंने ऑब्वियस फीड उठाया है,
वही, चलो थैंक यू सो मच फॉर आज का एपिसोड करके भी मुझे काफी मजा आया, काफी चीजें सीखी मैंने, जो एक प्रोसेस आपने बताया SEO का कैसे स्टार्ट होगा, मार्केट रिसर्च से लेके आपने बैकलिंक से लेके अथॉरिटी ब्लॉगिंग से लेके आपने ऑलमोस्ट हर चीज कवर की इसमें, जो भी एक इनिशियल लेवल पे हमको जाननी चाहिए, वो आपने सारी चेकलिस्ट शेयर की, थैंक यू सो मच। हम इन फ्यूचर भी ऐसे एपिसोड करते रहेंगे, अगर आपका टाइम रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो हम इन फ्यूचर भी हम अलग अलग टॉपिक्स पे करेंगे।
ओके,
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड। अगर आपने एपिसोड यहाँ तक सुना है और अब तक आप ये सुन रहे हो, तो आपके लिए मैं कुछ गिफ्ट लाया हूँ। आपने अगर एपिसोड अब तक सुना है, तो आपको मिलेगा फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन कॉल मेरे तरफ से। जी हाँ, जो कि मेरा कंसल्टेशन कॉल पेड होता है, बट आपको फ्री मिलेगा। बट आपको ये कुछ छोटे से स्टेप्स फॉलो करने, आई एम श्योर आप वो स्टेप्स पक्का फॉलो करोगे। अगर आपको मेरे साथ 15 मिनट का फ्री वन ऑन वन कॉल चाहिए, जूम कॉल, इंस्टाग्राम कॉल, तो आपको बस क्या करना है, जहाँ पे भी आप एपिसोड को सुन रहे हो, इंस्टाग्राम सॉरी आप सुन रहे होंगे स्पॉटीफाई पे, anchor.fm पे, एप्पल पॉडकास्ट पे या आईट्यून्स पे, जहाँ पे भी आप सुन रहे हो, आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है जहाँ पे भी आप सुन रहे हो, आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी और आपको 3 लर्निंग शेयर करनी है, 3 या 1 लर्निंग या 2 लर्निंग, जो भी है, जितनी भी आपने चीज़ें सीखी है, बस आपको मेंशन करना है कि आई लर्न दिस 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 थिंग फ्रॉम दिस एपिसोड, और मुझे टैग कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @thepiyushkukreja, thepiyushkukreja, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, आप वो भी देख सकते हो। मुझे टैग करो और उसके बाद मुझे मैसेज करो, आपको मिलेगा फ्री वन ऑन वन कॉल विथ मी, 15 मिनट वन ऑन वन कॉल विथ मी। आप मेरी स्टोरीज भी देख सकते हो, पिछली स्टोरीज में रोज़ किसी न किसी के साथ, रोज़ 2 या 3 लोगों के साथ मैं कॉल कर ही रहा हूँ। तो अगर आप ये मौका, और ये ज़्यादा दिन तक वैलिड नहीं होगा ये एपिसोड, अगर सुन रहे हो तो यू आर द लकी वन। सो जस्ट जाइए इंस्टाग्राम पे, टैग कीजिए, अपनी लर्निंग शेयर कीजिए और आपको मिलेगा 15 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन कॉल बाय पीयूष कुकरेजा एंड मे बी मोर एक्साइटिंग प्राइजेस। जस्ट आपको टैग करना है। एंड गाइस, जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर शाम के 6 बज रहे होंगे तो समझ जाना द पीयूष कुकरेजा शो का न्यू एपिसोड आ चुका होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।